दर्शन की आवाज में अंशुमाला। रत्नप्रभा का विचार था, दारा को अपनाकर उसने कीचड़ में से कांच पाया, परंतु दारा तो मनी निकली। संध्या समय समाज में रत्नप्रभा की प्रधान शिष्या मुक्तावली मयूर लय पर नृत्य कर रही थी। दारा तांबूल आधार लिए स्वामिनी की सेवा में उपस्थित थी। दृष्टि मुक्तावली की ओर लगाए ही रत्नप्रभा ने तांबूल के लिए दारा की ओर हाथ बढ़ाया। हाथ में तांबूल न पाने पर उसने देखा दासी अत्यंत तन्मय होकर मुक्तावली की गति की ओर दृष्टि लगाए थी। दृष्टि की अत्यंत एकाग्रता के कारण उसकी भ्रुकुटि पलकों में झुकाई थी। रत्नप्रभा विनोद में मुक्तावली को भूलकर दारा की एकाग्रता को देखती रही। सहसा दारा के मुख से निकला आह भंग और तांबूल आधार उसके हाथों से गिर पड़ा। मुक्तावली थम गई। पात्र के झंझनाहट से दारा को चेत हुआ। अत्यंत संकुचित और त्रस्त होकर उसने स्वामिनी और मुक्तावली दोनों से क्षमा याचना की। रत्नप्रभा ने उस शिष्टाचार की उपेक्षा कर दारा को मयूरी नृत्य शुद्ध रूप में पूर्ण करने का आदेश दिया। दारा ने अत्यंत विनय से असामर्थ्य और अज्ञान प्रकट कर अभद्रता के लिए पुनः क्षमा मांगी। रत्नप्रभा ने आग्रह किया, नहीं दारा, नृत्य कला से तुम परिचित हो, यह निसंदेह है। सहसा स्मरण होने पर उसने कहा, आह, उस दिन नदी पर तुमने कहा था तुम कलाविद हो, नर्तकी बनोगी। स्वामिनी के हद से विवश होकर दारा संकोच और मन की विरक्ति से अप्रतिम सी अवस्था में नृत्य के लिए प्रस्तुत हुई। वीणा और मृदंग बजने लगे। विवश दारा के पदों ने लय पर गति आरंभ की। वयोवृद्ध वादक रोहित नवीन नर्तकी के पराक्षेप से तुरंत उसकी क्षमता भांप गया। उसने लय को द्रुत और विलंबित अनेक गतियों में बजाया। दारा कहीं ना उखड़ी। कुछ समय नृत्य करने के पश्चात दारा उसमें आत्मविस्मृत हो गई। अपने प्राणों में लय भरकर वह इतनी सूक्ष्मता और वेग से नाची कि वृद्ध रोहित की उंगलियां पिछड़ने लगी। उसके मस्तक में श्वेत की धाराएं बह निकली। दर्शक चित्रित मूर्तियों की भांति आवक रह गए। रत्नप्रभा चिबुक पर उंगली रखे विस्मय जो विजड़ित सी बैठी रही। नृत्य समाप्त कर दारा ने स्वामिनी के सम्मुख प्रणाम किया। विस्मय का सम्मोहन समाप्त होने पर रत्नप्रभा अपने आसन से उठी, अपने कंठ की मणिमाला उतार कर दारा को पहनाकर उसने आलिंगन में लेकर बोली, सखी सागल मगध और तक्षशिला के चित्रकला की ऐसी पूर्णता कहीं संभव नहीं। सखी यह गुरु की विशेष कृपा और देवी सरस्वती के वरदान के बिना संभव नहीं। सखी तुम में मेरी गुरु देवी मल्लिका का अंश है, सत्य कहो यह रत्न कहाँ से पाया। विनय से सिर झुकाकर दारा ने कृतज्ञता में के स्वर में उत्तर दिया, सरस्वती के व्रत पुत्री उन्हीं देवी को नमस्कार है। रत्नप्रभा दारा के प्रति दयालु थी, उसका गुण और रहस्य जानकर वह उस पर आदर से अनुरक्त हो। रत्नप्रभा सोचती रही, उसने दारा का नाम रख दिया अंशुमाला। नाम बदलने के साथ पुनः दिव्या का संसार बदल गया। द्रव्य और विलास के प्रवाह में, संगीत और नृत्य के भवर में वह हंसावक की भांति अविच्छिन्न निर्लिप्त तैरने लगी। उसके दुख के दुर्भेद कवच के भीतर उस विलास और विनोद के भवर में जल की एक बूंद भी न गई। अंशुमाला की मुस्कान और हास्य केवल कला का कर्तव्य मात्र सी, समाज से पृथक होते ही वह निस्संग और तटस्थ हो जाती। जैसे जल से बाहर निकल आने पर हंस सावक अपने पर झाड़ कर जल की बूंद से रहित हो जाता है। उसका मन दारुण और विभत्स स्मृतियों के दुर्भेद आवरण में वेष्टित था। उसके मन में शाकुल का वियोग व्याप्त था। रसिक समाज अंशुमाला की मोहक लास्य और चमत्कार पूर्ण कला पर निष्ठावर होकर विभोर हो उठता। अमूल्य उपहारों की भेंट रत्नप्रिया के आसन के सम्मुख एकत्र हो जाती। अंशुमाला यह कुछ न देखती। उसकी अंतर्गत दृष्टि के सम्मुख शाकुल के क्षुधार भोले नेत्र उज्ज्वल हो उठते। शाकुल के वियोग में उसकी पीड़ा की पुकार श्रोताओं के हृदय में प्रवेश कर करुण रस के गीतों में श्लेष को अनुभूत अष्ठूल सत्य का उग्र रूप दे देती। नृत्य में उसकी आत्मरति और दृष्ट पूर्व थी। रत्नप्रभा का प्रसाद केवल मथुरा ही नगरी ही नहीं, अब संपूर्ण सूरसेन प्रदेश और उससे अधिक दूर के प्रदेशों के लिए भी कला का तीर्थ था। अब उसकी ख्याति मगध, कौरव, कठ और मद्र तक पहुंच गई। संध्या समय उसके समाज में स्थान के लिए रसिकों का विवाद होने लगता। जिस समारोह में अंशुमाला कला का प्रदर्शन करती, मार्गों की रक्षा और व्यवस्था के लिए राजपुरुषों की उपस्थिति आवश्यक हो जाती। अंशुमाला की लोकप्रियता के कारण रत्नप्रभा कि यहाँ पहले से दूना धन आने लगा। रत्नप्रभा और मुक्तावली के संगीत नृत्य पर जहाँ पुष्पमाला और रजत मुद्राओं की भेंट आती थी, अब स्वर्ण मुद्राएं, रत्न और मणिमालाएं बरसने लगी। नाम था रत्नप्रभा का, वास्तविकता थी अंशुमाला। रत्नप्रभा के प्रसाद में अंशुमाला के आकर्षण शक्ति का दूसरा परिणाम भी सम्मुख आया। श्रेष्ठी युवक सामंतगण राजपुरुष पुष्पमालाएं लेकर आते। ज्येष्ठ द्रव रत्नप्रभा के सम्मुख अर्पण कर अंशुमाला को जल विहार अथवा कानन विहार के लिए साथ ले जाना चाहते। रत्नप्रभा की कृपा और अनुग्रह की प्रार्थी अब उसके प्रसाद में आकर अंशुमाला के लिए व्याकुल रहते। बिना चिंता और प्रयत्न के बहते चले आने वाले द्रव्य के लिए रत्नप्रभा को कुछ आकर्षण न रहा। अपने आकर्षण की शक्ति खो बैठने से एक निसरता और निरुत्साह सा उसे अब सब ओर अनुभव होने लगा। रत्नप्रभा स्वयं पूजा की प्रतिमा न रहकर नई आई प्रतिमा की संरक्षिका, स्वामिनी और अधिष्ठात्री बन गई। अंशुमाला के स्तुति और अनुराग की भेंट में आने वाला सब द्रव्य उसी का था। आत्मसात हूँ मुस्कुराकर वह मन को समझाती, मेरे जीवन में आकर्षण का प्रयोजन और फल है ही क्या? द्रव्य ही तो मेरा प्रयोजन है, और फिर न्यूनता क्या, अभाव क्या है? परंतु मन न मानता, न्यूनता की अनुभूति कहती, धन का उपयोग क्या है? धन का उपयोग भोग में है, वह उसे किस प्रकार भोगे? सुंदर वस्त्र, आभूषण, भव्य भवन सब कुछ है, परंतु वे क्या संतोष देते हैं? वे जीवन का लक्ष्य नहीं, केवल उपकरण मात्र है, उन्हें देखता ही कौन है? ऐसे ही जैसे पिंजरा स्वर्ण का रहने पर भी महत्व कुछ पन्ने की सारिका का ही होता है। वह सोचने लगती, 18 वर्ष पूर्व जब वह अपनी शिक्षा मल्लिका के प्रसाद में पूर्ण कर मथुरापुरी लौटी थी, जनसमाज उसकी ओर झूम पड़ा था। उस समय कौमुदी ने उससे कितनी ईर्ष्या की थी, परंतु कौमुदी की ईर्ष्या किस बात के लिए थी? उसने ऐसा क्या पाया था जो उसका ही होकर रह गया? यही है वेश्या के जीवन का विद्रूप, यही है उसकी सफलता, समृद्धि और आत्मनिर्भरता। वेश्या देती है अपना अस्तित्व और पाती है केवल द्रव्य, परंतु प्रास्ता कुलवधु अपने समर्पण के मूल्य में दूसरे पुरुष को पाती है, किसी दूसरे पर भी अधिकार पाती है। वेश्या का जीवन मोटी बत्ती और लाल मिले तेल से पूर्ण दीपक के अनुकूल वायु में अति प्रज्वलित लौ की भांति या उल्कापात की भांति क्षणिक तीव्र प्रकाश करके शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। कुलवधु का जीवन मध्यम प्रकाश से चिरकाल तक टिमटिमाती दीपक की भांति है। ममता भरी शरण के हाथ प्रतिकूल परिस्थितियों के झंझावट में उसकी रक्षा करती है। वह अपने निर्वाण से पूर्ण, अपने अस्तित्व से दूसरे दीप जलाकर उसमें अपना प्रकाश देख पाती है। स्वयं उसका निर्वाण हो जाने पर भी उसका प्रकाश बना रहता है। ऐसी परंपरा ही मनुष्य की अमरता है। मारिस के शब्द से प्रायः ही स्मरण हो आते। मूर्तिकार चार्वाक मारिस के अनेक कथन प्रायः रत्नप्रभा को स्मरण हो आते, और उन शब्दों से संबंध स्मृतियां भी। पहले पहल 3 वर्ष वह युवक सिर पर असमय में पके केस लिए दक्षिणापट से सागर लौटता हुआ उसके यहाँ आया था। वह समाज में उपस्थित हुआ, उसके रूप और वेश ने रत्नप्रभा का ध्यान आकर्षित नहीं किया। समाज के अनंतर पर भी वह प्रसार में उपस्थित रहा। रत्नप्रभा के विश्राम के लिए समय उसने साक्षात्कार के लिए अनुरोध किया। रत्नप्रभा की अस्वीकृति से अनुत्साहित होकर उसने दासी द्वारा उत्तर दिया, हाँ नर्तकी का व्यवहार उचित ही है, उसकी संगति से संतोष की इच्छा मैं करता हूँ, परंतु इस संतोष का मूल्य द्रव्य से नहीं चुका सकता, परंतु द्रव्य के अतिरिक्त संसार में अन्य भी है। दासी द्वारा पाए मारिस के संवाद से हतप्रभ होकर रत्नप्रभा ने अनिच्छा से उसे साक्षात्कार का अवसर दिया। मारिस के व्यवहार में कुछ ऐसा था कि रत्नप्रभा उसकी उपेक्षा न कर सकी, वह कई पक्ष तक उसका अतिथि बना रहा। उसका अद्भुत प्रलाप आरंभ में रत्नप्रभा के लिए कौतूहल का हेतु था, परंतु कुछ ही समय में वह उस प्रलाप पर गंभीरता से मनन करने लगी, वह और अधिक गंभीर हो गई। रत्नप्रभा के हृदय में संतोष न था, परंतु विश्वास और आशा थी। अपने व्यवसाय से संचित द्रव्य का यथेष्ट भाग वह यज्ञ बलि में अर्पण करती थी। उसे विश्वास था पूर्व जन्म के कर्मफल से उसने इस जन्म में केवल ख्याति और धन पाया है, परंतु जीवन की पूर्णता से वह वंचित रही। इस जन्म के पुण्य में वह इस पूर्णता को परलोक और पुनर्जन्म में पाएगी। परिहासपूर्ण उपेक्षा से मारिस ने कहा, देवी क्या सिर के पीछे से हाथ घुमाकर नाक पकड़ने के प्रयत्न में अधिक सुख मिलेगा? ऐसा क्यों कहते हो? रत्नप्रभा ने विस्मय से पूछा। इसलिए कि मारिस ने उत्तर दिया, परलोक में अधिक भोग का अवसर पाने की कामना से किया गया यह त्याग त्याग नहीं, तुम्हारी आशा और विश्वास के अनुसार यह त्याग भोग की आशा का मूल्य है। भोग की इच्छा है तो साधन रहते भोग करो, आत्मप्रवंचना का वंचित होने से क्या लाभ? परलोक केवल अनुमान और कल्पना है, प्रत्यक्ष नहीं। जो तुम्हें परलोक का विश्वास दिलाता है उसने परलोक को दूसरे के कथन मात्र से जाना है, और दूसरे ने किसी और के कथन से। परलोक को स्वयं देखकर किसी ने उसके सत्य होने का साक्ष्य नहीं दिया। नित्य के व्यवहार में ऐसे प्रमाण पर कोई विश्वास न करेगा। ऐसे आधार पर प्रगत स्थूल जीवन की न्योछावर कर देना क्या बुद्धिमानी है? रत्नप्रभा मारिस की ओर देख मौन हो गई, उसने तर्क का उत्तर न दे सकी। मारिस कहता या मृत्यु के बाद तुम परलोक किस प्रकार प्राप्त करोगे? जीवात्मा से? देवी ब्रह्मवादियों का जीवात्मा कुछ नहीं है, वह भी केवल अनुमान और कल्पना है। मनुष्य की विचार और अनुभव की शक्ति स्थूल शरीर के ही सुख गुण है, वैसे ही जैसे स्थूल पुष्प में सुख सुगंध निवास करती है, जैसे तेल और बत्ती के जलने की क्रिया का फल प्रकाश है। निर्वाण पश्चात दीपक का प्रकाश कहाँ जाता है? दीपक या सूर्य के से पृथक होने पर प्रकाश का अस्तित्व कहाँ रह जाता है? देवी इसी प्रकार जीवात्मा को जानू, जीव से पृथक आत्मा कहाँ है, उसका अस्तित्व कैसे संभव है? देवी मारिस ने उत्तेजित पर में कहा, जिस स्थूल प्रत्यक्ष जगत और शरीर अनुभव संपूर्ण जन करता है उसे ब्रह्म मानना, और जिस ब्रह्म और जीवात्मा की कल्पना केवल ब्रह्मवादी करता है उसे सत्य मानना, क्या युक्तियुक्त और बुद्धिसंगत है? देवी दूसरे के शब्द पर अंधविश्वास करने की अपेक्षा अपनी अनुभूति और तर्क का आश्रय लो। यह जीवन ही सत्य है, यह संसार ही सत्य है, जो पाना है इसी जीवन में पाओ। अनेक क्षण मारिस की ओर अपलक देखती रहकर चिंता के बोझ से दबे स्वर में रत्नप्रभा ने प्रश्न किया, परंतु आर्य यह शरीर नश्वर है, इस शरीर का प्राप्य सुख भी नश्वर और अस्थायी है। मारिस अनमुन्ने नेत्रों से विद्रूपमयी टिब्बी दृष्टि से रत्नप्रभा की जिज्ञासा से फैले नेत्रों में डालकर मुस्कुरा दिया, शरीर नश्वर और अस्थायी है, देवी अमरता चाहती हो? इच्छा अच्छा कहो, अपने चारों ओर जितने पदार्थ तुम देख पाती हो उनमें से कितने सदा एक रूप, एक रस, एक गंध रहते हैं? जिसे तुम नाश कहती हो वह केवल परिवर्तन है, अमरता का अर्थ है अपरिवर्तन। कल्पना करो संसार का कोई भी परिवर्तन न हो, उस संसार में क्या सुख और आकर्षण होगा? मारिस उसकी ओर देखता रहा। कुछ क्षण विचार में मौन रहकर रत्न प्रभा बोली, आर्य सत्य कहते हैं, अपरिवर्तनशील संसार सुखदायक ना होगा। मानिस बोला, और फिर मनुष्य अमर ही है, सहस्त्र सहस्त्र वर्ष चलती आती मनुष्य की परंपरा ही उसकी अमरता है। बारिस की संगति से रत्नप्रभा परलोक और अमरता की कामना से विरत होकर प्रस्तुत जीवन की सार्थकता की बात सोचने लगी। यथेष्ट द्रव्य पाकर भी स्वयं समाज के लिए भोग्य बने रहने से उसे जीवन की सार्थकता न जान पड़ती। कुलवधु के जीवन की कल्पना उसे अत्यंत आकर्षक जान पड़ती, परंतु वह अवसर जैसे हाथ से निकल गया था। अपने स्वामी के रूप में वह किसे ग्रहण करती, किसके हाथों में वह अपने आप को अर्पण कर सकती थी। अपना जीवन उसे केवल जीवन के लिए कामना और उत्तेजना उत्पन्न करने का साधन मात्र जान पड़ता, उसमें संतोष नहीं था। वेश्या की जीविका के साधनों के रूप में विशेष समर्थ होकर भी हंसुमाला में गर्व न था, वह अपने प्रति निरपेक्ष थी। रत्नप्रभा के प्रति अत्यंत कृतज्ञ, अनुरक्त और आश्रित। परिचय के प्रारंभ से ही रत्नप्रभा ने उसके प्रति करुणा और ममता अनुभव की। उसे अपनी गुरु मल्लिका की शिष्या जानकर उसके प्रति उसकी अनुरक्ति और निर्भरता देखकर अंशुमाला के प्रति अत्यंत वात्सल्य हो गई। अंशुमाला की स्वामिनी पुकारने पर भी वह बहन और सखी ही संबोधन करती। 40वें वर्ष में पहुंची हुई रत्नप्रभा को अंशुमाला में अपने पद और स्थान की स्पर्धा करने वाली प्रतिद्वंदी नहीं, अपितु अपनी परंपरा की रक्षा करने वाली उत्तराधिकारी दिखाई दी। वह गर्व संतोष और स्नेह से उसे अंशुमाला न पुकारकर अंशुप्रभा पुकारने लगी। रत्नप्रभा के प्रसार में अंशुमाला के प्रकट होने पर मथुरा का रसिक समाज उसी प्रकार विभोर हो उठा, जिसे निरंतर घटातोप मेघोर वर्षा से क्लांत जन समाज अंशुमाली के उदय से आश्वासन पाता है। परंतु अंशु उस स्तुति से पुलकित न हुई, उसकी विरक्ति और अंतर्वृत्ति में अंतर न आया। अंशु की उपेक्षा से अनुरागी रसिकों को और व्यग्र कर दिया। रसिकों ने भेंटों के रूप में अंशु की विरक्ति और उपेक्षा के वर्म पर सामर्थ्य भर आघात किए। इस पर भी अपने प्रयत्न में विफल रहकर रसिक असफलता के संकोच से उपराम होने लगे। समाज में अवसाद फैलने लगा। अंशुमाला वेश्या नहीं, केवल नृत्य की काष्ठ पुतलिका है। वह प्रस्तर के देवता के सम्मुख नृत्य का अनुष्ठान करने योग्य नृत्य का यंत्र मात्र है। उसका लास्य स्मित और कटाक्ष केवल कला का अनुष्ठान मात्र है, मनुष्य के संतोष की वस्तु नहीं। उसके अपने जीवन में कुछ नहीं, वह किसी के लिए कुछ नहीं। कामना के रूप में जीवन की उष्मा से वह हीन है। वह रत्नप्रभा की काष्ठ पुतलिका मात्र है। देवी रत्नप्रभा यह अवसाद सुनती और स्वयं भी से वास्तविकता को देखती। वह अंशु के मन के अवसाद की बात सोचती और उसके व्यवसाय के भविष्य की चिंता करती। अंशु को कुछ कह सकना कठिन था और मौन रह जाना हानिकर। एक ओर उसका मन दुखाने का भय था, दूसरी ओर भविष्य की हानि। प्रख्यात तांत्रिक पिठू से रत्नप्रभा ने अंशु के मन का अवसाद दूर करने के लिए अनेक उपचार करवाए, परंतु सफल न हुई। संकोच से रत्नप्रभा ने समझाया, मृत्यु तो एक दिन आएगी, जीवित रहते मृत्युवत व्यवहार करने से क्या लाभ। जिनसे हम जीवन के साधन पाती है उसकी अवज्ञा क्या उचित है। जन अवसाद से मुक्ति पाने के लिए हमारे समीप आते, हम भी उन्हें विरक्ति और अवसाद ही दें तो हम किस सुख से मुख से क्या आशा करेंगी। प्रयोजन से हीन कला मोहक रूप रंग लिए मिट्टी के फल के समान है, जो तृप्ति नहीं दे सकती। अनुराग लेकर अनुराग की आशा से आने वालों का तिरस्कार क्यों किया जाए। अनुराग आदर का क्रियात्मक रूप है। वेश्या बनकर आत्मनिर्भर नारी होने का तुम्हारा विचार था, अपने व्यवसाय के प्रति आदर और निष्ठा व्यक्ति का कर्तव्य है। रत्नप्रभा जो कुछ और जैसे कहना चाहती थी कह ना पाई। अंशुमाला ने कर जोड़ कर सजल नेत्रों से अपराधनी के समान कातर कंपित स्वर में उत्तर दिया, स्वामिनी यह तन तुमने क्रय किया है, मन स्वयं मेरे वश नहीं। तुम्हारी करुणा के अधीन मैं उसे भी तुम्हें अर्पण कर देना चाहती हूँ। मैं आभारी हूँ, आज्ञा का पालन करूंगी। अपनी शुभकामना से अंशुमाला को दुखित हुआ देखकर रत्नप्रभा कुंठित हो गई। यदि मारिस होता, उसने सोचा, अपने तर्क से अंशु की विरक्ति और अवसाद का वर्म संभवता भंग कर सकता था। उसकी बात वह ध्यान से सुनती, संभवता उसका मन बदल जाता। मारिस की स्मृति रत्नप्रभा के मन में बनी थी, अब वह उसकी आवश्यकता अनुभव करने लगी। मारिस कभी अनिश्चित परदेशी पक्षी की भांति उसके प्रसाद पर से उड़ान भर जाता, सागल में ठुकराया जाकर वह सूरसेन के मार्ग से मगध चला जाता। मगध से प्रताड़ित सूरसेन पहुंचता और सूरसेन से विरक्त होकर पुनः सागल की ओर चल लेता। सावन मास में प्रतिवर्ष मथुरापुरी के उपांत वृंदावन में डोल महोत्सव होता था। सभी नगरों और प्रदेशों से आबाल बनिता रसिक समूह और कलाविद वहाँ एकत्र होते, जन विनोद के लिए और कलाविद कला के वर्ष के लिए। ज्ञानवृद्ध और वयोवृद्ध कलावंतों की कंठ साधना के सूक्ष्म तत्व और लोल नर्तकियों के अंगलाश्य कला के सभी अंग और प्रसंग वहाँ उपस्थित होते। रसिकों की सभा सर्वश्रेष्ठ कलावंत को सम्मानित करती, कलावंत के यश से उसका प्रदेश सम्मानित होता। वह सम्मान कभी मगध, कभी कौरव, कभी मध्य देश, कभी मल्ल देश प्राप्त करता। परंतु रत्नप्रभा के खारे मंसु के प्रकट होने से तीनों वर्ष वह सम्मान मथुरापुरी के भाग्य में आया। डोलोत्सव से अंशुमाला की ख्याति दिगंत पर्यंत फैल गई। डोलोत्सव के प्रसंग से मथुरापुरी आए रसिक प्रवासियों के कारण पावस ऋतु में रत्नप्रभा के चतुस्साल में अभ्यागतों के लिए स्थान का अभाव हो जाता। संध्या समय साधारण वर्षा होने पर भी समाज में व्याघात न होता। श्रावण बीत जाने पर भी भाद्रपद में भी संध्या घोर वर्षा से घिरी रहती। ऐसी असुविधाजनक संध्या में वर्षा के कारण मार्ग दुर्लंघ्य हो जाने पर भी रत्नप्रभा और अंशुमाला विश्राम पा सकती थी। ऐसी ही एक संध्या आलिंद में अकेली बैठी रत्न प्रभा अपने जीवन और अपनी प्रिय सखी अंशुमाला के भविष्य के संबंध में विचार कर रही थी। मार्ग दिखाती हुई दासी के पीछे आकर सहसा मारिस ने रत्न प्रभा का अभिवादन किया। चिर प्रतीक्षित मित्र को देखकर रत्न प्रभा का नेत्र आह्लाद से चमक उठे। तत्काल ही उसके मस्तिष्क में विचार कोंधा आया, यदि मारिस अंशु का अवसाद दूर कर सके। उसने मारिस से आसन ग्रहण करने का अनुरोध किया। निरंतर वर्षा हो रही थी। अलिंद में रत्न प्रभा और मारिस उपाधानों का आश्रय लिए बैठे थे। वर्षा की अधिकता से अधर में गिरते जल को भित्तियों का रूप दे दिया गया था। रत्नप्रभा के चतुस्ताल में मृदंग और मुरज मौन थे। आकाश में इथलाते घने कृष्ण मेघ अल्हरपन में इस मौन के प्रति व्यंग कर उस शब्द की प्रतिध्वनि कर रहे थे। मंद वायु से गुनगुनाई जाकर प्रकृति मेघों की ताल पर थिरक कर नृत्य का व्यंग कर रही थी। रत्नप्रभा ने चवरधारी दासी को आदेश दिया कि अंशुमाला को आने का संदेश दे, सुरा आधार प्रस्तुत करे। अंशुमाला का प्रसंग आने पर मारिस ने कौतूहल प्रकट किया, देवी अवसर से तुम्हें ऐसी शिष्या मिली कि चातुर्दिक तुम्हारा यश फैल गया। अवश्य ही मैं उसके दर्शन और उसकी कला के आनंद से कृतार्थ होऊंगा। आर्य के साक्षात्कार के लिए ही मैंने अंशु का स्मरण किया है। परंतु मित्र, उस वीतराग नर्तकी से निराश न होना। मन में समाये विषाद के कारण लास्य विलास उसके लिए केवल भृति कार्य है। मारिस विस्मित था। अंशुमाला मूल्यवान परंतु उपेक्षा से धारण किए अत्यंत शुभ्र वस्त्र पहने अलिंद में प्रस्तुत हुई। उसके शरीर पर कोई आभूषण न था, एक पुष्प भी नहीं। अलस उदासीनता में उपेक्षित शुभ्र वस्त्रों में फूटी पड़ती अपने शरीर की कमनीयता के प्रति वह इस प्रकार निरपेक्ष थी जैसे वह उसके बस का विषय नहीं। पल्लव ओष्ठों के छीन स्फुरन से उदास मुख पर शिष्टाचार की मुस्कान लाने का प्रयत्न कर हाथ जोड़ अंशुमाला ने निवेदन किया, जनपद कल्याणी देवी रत्न प्रभा के अनुचर नट की अंशुमाला आर्य अभ्यागत का अभिवादन करती है। मारिस अंशु की ओर अपलक दृष्टि लगाए था। सहसा उसकी स्मृति जाग उठी। शुभ्र वस्त्रधारी संकुचित उदास नटकी के पीछे उसे 5 वर्ष पूर्व देखा व्यथित मराली का नृत्य अधर में दिखाई देने लगा। रत्नप्रभा के संकेत से अंशु विस्तर पर बैठ गई, परंतु स्वामिनी का संकेत पासुरा पात्र से एक चषक पूर्ण कर दोनों करों से अभ्यागत के सम्मुख प्रस्तुत करने निवेदन किया आर्य स्वीकार करे। मारिस अब भी अपलक दृष्टि से श्वास रोके अंशु की ओर देख रहा था। उस दृष्टि की तीव्रता से हाथों में चषक लिए अंशु विजड़ित सी रह गई। परिस्थिति भाप कर रत्नप्रभा ने अपने बाहु सांत्वना के भाव से अंशु की पीठ पर रख दी। मारिस की दृष्टि में अत्यंत व्यग्रता का भाव देखकर मुस्कुराकर रत्नप्रभा ने अंशु के सम्मुख अपनी उत्तरीय के आंचल की ओट कर दी और कौतुक के स्वर में मारिस को संबोधन किया, आर्य ऐसी कठिन दृष्टि से मेरी सुकुमार सखी त्रस्त हो जाएगी। अतीत की स्मृति में विस्मित मारिस की दृष्टि अपलक और अस्थिर रही। उसके होंठ हिले, कुमारी दिव्या, अंशु के नेत्र झुक उठ गए, उत्तर न दे सकी। रत्नप्रभा ने मारिस की ओर देखा और अंशु की ओर भी देखा। दोनों के ही मुख पर बरसने से पूर्व उमड़ते मेघ की गंभीरता थी। कुछ क्षण वह स्वयं कर्तव्य में ऊंध रह गई और बिस्तर से उठकर चवरधारी दासी को किसी कार्य के लिए आदेश देते हुए साथ ले चले गई। कुछ क्षण मौन रहकर मारिस ने पुनः संबोधन किया, कुमारी दिव्या। अंशु सुरा का चषक दोनों हाथों में थामे निश्चल थी। उसका मस्तिष्क अधिक झुक गया। छीन स्वर में उसने उत्तर दिया, आर्य अब मैं दिव्या नहीं हूँ, अब कुमारी भी नहीं हूँ। देवी रत्नप्रभा की कृत दासी वेश्या नटकी अंशुमाला आर्य सुरा ग्रहण करे। दीर्घ निश्वास ले मारिस ने अंशु के हाथ से चषक थाम कर पुनः आधार पर रख लिया। एक और श्वास वक्ष में भरकर पुनः स्मृति के पंखों का आश्रय ले उसका मन अतीत की ओर चला गया। कुछ समय उसी अवस्था में रहकर उसने अंशु को संबोधन किया, भद्रे इस दूर देश में इस स्थान पर भद्रे का आना किस प्रकार हुआ, आर्य भाग्य से अथवा कर्मफल से। अंशु ने घने मेघ से छाई संध्या के अस्पष्ट प्रकाश में अपने नेत्र मारिस की ओर उठाकर साहस से उत्तर दिया। भाग्य और कर्मफल का प्रसंग सुनकर मारिस जैसी विचार तंद्रा में चुटकी काट ली जाने से व्यग्र हो उठा। भद्रे, भाग्य और कर्मफल से क्या अभिप्राय? भाग्य का अर्थ है मनुष्य की व्यवस्था और कर्मफल का अर्थ है कष्ट और व्यवस्था के कारण का ज्ञान। भद्रे, इसके अतिरिक्त भाग्य और कर्मफल कुछ नहीं है। अपनी उंगली के नखों की पर दृष्टि झुकाकर अंशुमाला ने उत्तर दिया, आर्य दासी का अभिप्राय व्यवस्था और व्यवस्था के कारण का ज्ञान ही समझे। अंशु के उत्तर में अपने विचार का अनुमोदन पाकर मारिस ने सांत्वना की सांस ली, परंतु अंशु के अनुमोदन से प्रसंग का मार्ग पुनः रुक गया। मारिस आधार पर रखे सुरापात्र की ओर दृष्टि किए मौन बैठा था। अंशु ने कर्तव्य के विचार से पुनः अतिथि के सम्मुख अनुरोध किया, आर्य पान ग्रहण करे। दृष्टि उठाए बिना मारिस ने अनुरोध रक्षा के लिए चषक उठाकर सुरा को अवसर की भांति पी लिया और फिर अलिंद के सम्मुख भूमि और आकाश के अंतर को जल बिंदुओं से पूर्ण करती वर्षा की ओर देखने लगा। उसी ओर दृष्टि किए वह बोला, 5 वर्ष पूर्व सागल में पुण्य स्मृति महापंडित धर्मष्ट के देहांत के समय अनेक असंबद्ध प्रसंग सुने। महापंडित की तपोत्री का पूर्ण यौवन में अत्यंत रुग्ण होकर काल कवलित हो जाना, आत्महत्या का संदेह। आज भद्रे को यहाँ इस रुग्ण अवस्था में पाया, यह स्वप्न अथवा वह स्वप्न था, दोनों ही यथार्थ है। मुख रोदन का आभास पाकर मारिस ने अंशु की ओर देखा। उसका मुख उत्तरीय के पीछे था। मारिस का स्वर आर्द्र हो उठा। इस प्रसंग भद्रे के लिए अवसाद का कारण है। मैं इस विषय में कुछ न कहूंगा। अपने उद्वेग का निग्रह कर अंशु ने विनय के स्वर में कहा, आर्य, आत्मीय का वियोग दुख का कारण होता है, तात ही न्यासी के एकमात्र आश्रय थे। निसंदेह वियोग दुख का कारण होता है, परंतु भद्रे मृत्यु शरीर का धर्म है। भद्रे तात का वियोग सागल का दुख था। 120 वर्ष तक वे न्याय की भावना के रूप सागल का गौरव बने रहे। उनकी पुण्य स्मृति भी सागल का गौरव रहेगी। भद्रे, उनका व्यापक स्नेह खोकर सागल ने व्यापक दुख पाया। भद्रे, ऐसा दुख भी सौभाग्य से होता है। जैसे संतान के स्वास्थ्य की चिंता के मूल में संतानवान होने का सुख अंतर्निहित है। बारिश और अंशु कुछ समय तक मौन बैठे रहे। दो घड़ी पश्चात रत्नप्रभा हाथ में आलोक लिए दासी के साथ लौटी। बारिश और अंशु को निश्चल देख और मौन देखकर उसके हृदय में कंटक अनुभव किया, परंतु परिहास के स्वर में बोली, जो अंतर्यामी जन बिना कहे और सुने ही दूसरे के मन की बात जान सकते और अपनी प्रकट कर सकते, उन्हें रात्रि में विलंब कर समीप बैठने से क्या प्रयोजन। दोनों को ही नृत्य देख रत्नप्रभा ने अंशु की पीठ छू कर कहो, उठो सखी, विलंब हो गया। आर्य के विश्राम की व्यवस्था अतिथिशाला में है, वे दिन की यात्रा से शांत है। अंशु मांगला के लिए गत जीवन की स्मृति विभत्स और दारुण थी। भविष्य की कल्पना शून्य, गत जीवन की दुखों की स्मृति से वह आंसू न बहाती। यदि बहाती तो किस किस दुख को लेकर। सुख की आशा और कामना भी वह न करती। सुख है क्या, उसने सोचा, संपन्न परिवार, अनुरक्त पति, सुंदर संतान, वह सब पाया और नहीं रहा, और उन सब के परिणाम में दुख पाया। उसे स्मरण हुआ, स्थावित चिमुक कहते थे, सुख और दुख अन्योनाश्रय है, सुख की इच्छा से ही दुख होता है। संसार में जितना सुख है उसमें बहुत अधिक दुख है। जब संसार ही दुखपूर्ण है तो वह उससे भागकर कहां जाएगी। अंशु सहिष्णुता की जड़ता में अपने प्रति निरपेक्ष होकर शांत थी। उसकी जीवन की चेष्टा प्रयोजन रहित थी। उसका मस्तिष्क अपने प्राकृतिक स्वभाव के कारण विचार अवश्य करता, परंतु उस विचार में प्रयत्न और निर्माण की प्रवृत्ति न रहती। केवल विरक्ति और अनाशक्ति का भाव था, एक तर्क जो सब ओर व्यर्थता खोजता था। अंशु के मारिश के सम्मुख दो घड़ी मौन बैठने के पश्चात रात भर विक्षिप्त रही। जड़ता के परिमाण में पाई और उसकी मानसिक स्थिरता इस संपर्क से क्षुब्ध हो गई, जैसे क्षुब्ध ताल में उठी लहरें तल में बैठी कीच और काही को ऊपर ले आती है। उसी प्रकार मारिश के साक्षात्कार ने गत जीवन की स्मृतियों को टहरा दिया। 3 वर्षों में प्राप्त हुई स्थिरता कुछ ही क्षणों में छिन्न भिन्न हो गई। अंशुमाला ने दासी को कष्ट से आलोक हटा लेने का आदेश दिया। दो घड़ी कोमल पर्यंक पर अनिद्रा में करवटे लेते लेते उसकी कल्पना में पुरोहित चक्रधर के घर की स्मृति जाग उठी। पुरोहित के घर में वह नग्न शिलाओं पर निद्रा हो अवश्य हो जाती थी। स्वामिनी के अनेक बार पुकारने पर अथवा शाकुल के चीटकार करने पर जब उसकी निद्रा भंग होती तो निद्रा में मृतवत हो जाने के अपराध में उसे स्वामिनी की प्रताड़ना और लांछना सुननी पड़ती। गवाक्षों और द्वारों से निरंतर आता घोर वर्षा कठिन शब्द कानों से भर जाने के कारण नीरवता अनुभव हो रही थी। वह तर्क करने लगती, आकाश से गिरने वाली प्रत्येक जलबंधु का शब्द है। ऐसी ही असंख्य दुखों की एक साथ अनुभूति मनुष्य को किसी एक दुख का अनुभव करने योग्य नहीं रहने देती। वह दुखहीन हो जाता है। आर्य मारिस मौन बैठे रहे, जैसे वे मेरे दुर्भाग्य से दुखी हैं। मेरे दुर्भाग्य से वे दुखी क्यों हैं? सत्सह रसिक समाज वहाँ रस और विनोद के लिए आता है। उन्हें मेरे उसी अस्तित्व से प्रयोजन है जो उनके सम्मुख रहता है, परंतु आर्य मारिस प्रगट के पीछे छिपे वास्तविक की उपेक्षा न कर सके। 5 वर्ष पूर्व आर्य मारिस ने मधुपर्व उत्सव पर उसकी सफलता के आदर में कहा था, भद्रे, तुम्हारी कला तुम्हारी आकर्षण शक्ति का निखार मात्र है जो नारी में सृष्टि की आदि शक्ति है। उस समय मारिस के भाव और वचनों में उच्छृंखलता जान पड़ने से उसने कुंठा और विरक्त अनुभव की थी। यह सब रसिक समाज स्वामिनी के प्रसाद में किस लिए आता है? सागल में देवी मल्लिका के प्रसाद में समारोह का प्रायोजन क्या था? नारी के आकर्षण सृष्टि की उस आदि शक्ति से विनोद के लिए रसिक समाज आता है, अपना विनोद कर चला जाता है। परंतु मारिस विनोद की हाट में अवसाद खोज रहे, उन्हें विनोद ही नहीं संवेदना अर्थात वेदना से संतोष हुआ। सब व्यर्थ है, सब व्यर्थता। अंशुमाला घोर वर्षा के घने अंधकार में कोवल पर्यंक पर लेटी विचारों में उलझी अनिंदित रही। प्राय निरपेक्ष और तटस्थ रहने वाला मारिस रत्नप्रभा के प्रसाद में दिव्या को अकस्मात पाकर विक्षिप्त हो गया। रात्रि के अधिकांश भाग में वह निंद्रा न पा सका। दिव्या के दुख के बोझ से परास्त, निराश, वीत राग, मूर्त निरंतर उसकी कल्पना में उपस्थित रही। शुभ्र वस्त्र धारण की उपेक्षा से मूर्ति दिव्या मारिस के स्थल में समा गई। एक श्वास में दिव्या की रत्नप्रभा के आलिंद में दिखाई पड़ी निराश मूर्ति उसकी कल्पना की दृष्टि से सम्मुख उपस्थित होती, और दूसरी श्वास में सागल में महापंडित धर्मष्ट के प्रसाद में जीवन की उत्साह और आशा की नवविकसित मंजरी की भांति रूप सौरभ और स्फूर्ति के स्पंदन बरसाती दिव्या की मूर्ति उसकी कल्पना में जाग उठती। संवेदना में उसका हृदय पिघल कर अवश्य हो जाता, जैसे पिघल जाने पर मोम हाथ में सिमटा नहीं रह सकता। सागल में मारिश ने दिव्या के प्रति आकर्षण अनुभव किया था, परंतु वह आकर्षण कामना का नहीं केवल स्तुति का था। मारिश अपने असामर्थ्य और हीन स्थिति के प्रति व्यसुद्ध न था। वह दिव्या और स्वयं उसके बीच की गहरी खाई के व्यवधान से परिचित था, परंतु रत्नप्रभा के प्रसाद में दिव्या गर्त और गौरव के दुर्धर शिखर से उतरकर समभूमि पर मारिस के हाथ की पहुंच से आ गई थी। मारिस संवेदना का हाथ बढ़ाकर उसे स्पर्श कर सकता था। संवेदना का अवलंब पाकर मारिस का आकर्षण प्रबल हो गया। वह दिव्या को देख पाने उसके समीप हो सकने के लिए व्याकुल हो उठा, परंतु अतीत के प्रसंग से दिव्या ने क्षोभ और व्यथा अनुभव की थी। मारिस अपने संतोष के लिए उसे व्यथित न करना चाहता था। उसके मन में शूल सा गड़ गया था। क्या शेष जीवन दिव्या इसी प्रकार रहेगी? संध्या पर्यंत विचार और दुविधा में उद्विग्न रहकर मारिस रत्नप्रभा के समाज में पहुंचा। रत्नप्रभा के समीप आसन से उठकर अंशुमाला ने गायन और नृत्य किया। उसका प्रसाधन सुचिपूर्ण और लावण्यमय था। उसके ओठों और नेत्रों में संगीत के अनुकूल सजीवता और मुस्कान थी। मारिस एक और बैठा था। वह संगीत और नृत्य में तन्मय न हो सका। वह सोचता रहा, क्या इस कृत्रिम किल्लोलमयी अंशुमाला की अपेक्षा गत संध्या के अवसादपूर्ण शुभ्रवास वसन और आधारहीन आभरणहीन दिव्या कहीं अधिक कमनीय न थी? गत संध्या वह अपने मन का दुख प्रकट करने के लिए स्वतंत्र थी। इस समय वह विरोध का साधन बनने के लिए विवश है। रसिक समाज उसके अपने नेत्रों में उसका लावण्य भोग रहा है। वह परवश होकर भोग के लिए उपस्थित है। समाज की स्तुति के उत्तर में अंशुमाला का सस्मित विनय उसे असह्य जान पड़ा। वह व्यग हो उठा, कब समाज का अंत हो? नृत्य और गायन से शांत अंशुमाला अपने कक्ष में दासी वृंदा की सहायता से प्रसाधन से निवृत्ति ले रही थी। द्वार रक्षक दासी मोर पंख का वजन लेकर उसके श्वेत सिक्त शरीर को वातास द्वारा शीतल कर रही थी। वृंदा ने अंशु का कंचुक खोल दिया और उसकी फैली हुई बाहु सहारे के लिए कंधे पर रखकर बहुमूल से अंगद खोल रही थी। द्वार पर द्वार रक्षक दासी को न पाकर मारिस के सूचना दिए बिना सहसा कक्ष में आ जाने से अंशु लज्जा और संकोच से सीमित और कांप कर बैठ गई। दासी ने समीप पड़ा उतरी उसके कंधों पर ओढ़ा दिया। उसके नेत्र अधमुने थे और गालों पर रुनाई गहरी हो गई। मारिस थिटका और विमूढ़ हो ग्रीवा झुकाकर लौट आया। अलिन तक पीछे लौट कर उसने सुना, आर्य स्वामिनी नमस्कार निवेदन करती है। मारिस विचार विमूढ़ सा कक्ष में लौट आया। अंशु यथास्थान वस्त्र धारण कर चुकी थी। नृत्य के समय के कुछ आभूषण उतार चुके थे, कुछ शरीर पर शेष थे। लाज संकोच और शिष्टाचार की मुस्कान से उसका मुख और नेत्र दीप्त हो रहे थे। कर जोड़ मस्तक झुकाकर उसने निवेदन किया, आर्य पधारिए। उसके केसों में अब भी मुक्ता गुच्छ झूल रहे थे। मस्तक पर चंद्रिका तिलक और ओठों पर राग था। संघ के समान ग्रीवा का मार्डव मुक्तावलियों से घिर कर अधिक उद्भासित हो रहा था। रक्त कौशे में पीठ पीछे खींचकर पूर्ण गोलार्ड बने उरोज बंधन में आकर वागुड़ा खींचे अश्व की भांति और अधिक मुखर हो रहे थे। कति से नीचे धानी रंग का अत्यंत चिकना शातक वीणा के कुष्मांड की भांति नितंबों की ओट लेकर अधिक आकर्षण बनाए था। शांति के कारण अस्पष्ट रूप से थिरकती पुष्ट लंबी तुम्बी के समान जंघाओं की आकृति उसमें से व्यक्त हो रही थी। कंचुक और शातक के मध्य अनावृत त्रिवली अपनी स्वाभाविक कमनीयता से दोनों ओर रक्त और धानी कोशे लजा रही थी। मारिस चित्त उद्विग्न हो जाने के कारण अंशु के शिष्टाचार का उत्तर उचित शालीनता से न दे सका। अंशु को मारिस के शिष्टाचार की न्यूनता न खली, गंभीर का आवरण लिए उसकी उद्विग्नता ही खली। पीठिका की ओर संकेत कृष्ण अनुरोध किया, आर्य आसन ग्रहण करे। मारिस ने आसन ग्रहण किया, परंतु अभ्यर्थना की स्वीकृति में उत्तर न दे पाया। आभरण उतारती दासी की उपेक्षा कर मारिस ने समीप होकर अंशुमाला से पुनः प्रश्न किया, आर्य मन और शरीर स्वस्थ है? भद्रे मैं स्वस्थ हूँ। मेरे अकस्मात प्रवेश से भद्रे को असुविधा हुई। आत्मसंवरण की चेष्टा से स्वयं मारिस के मुख पर असुविधा के चिन्ह प्रकट हो रहे थे। मारिस की असुविधा का कंटक अंशु के मन में अनुभव किया। असुविधा नहीं आर्य, दासी सेवा के लिए प्रस्तुत है। मारिस क्षण भर मौन रहकर अत्यंत स्वर में गंभीर स्वर में बोला, आर्य निवेदन की इच्छा अदमनीय हो जाने पर ही उपस्थित हुआ। अंशु का मस्तक ऐसे गूंज उठा जैसे मृदंग का सहसा पूरी था पर आ पड़ी। विचार को संयत रखने के लिए दोनों हाथों की उंगलियां परस्पर बांधकर उसने सोचा, स्वामिनी की अनुमति बिना किसी पुरुष का उसके अंतकक्ष में होना उचित नहीं, और कहा, आर्य कक्ष में उत्तम है, यदि असुविधा न हो उद्यान की मुक्त वायु में बैठकर वार्तालाप करें। विजनधारी दासी देवी के अंतकक्ष में अकस्मात एक पुरुष के प्रवेश से स्तब्ध होकर अपना कर्तव्य भूल गई थी। संकेत पाकर वह तुरंत व्यजन दुलाने लगी। उसकी ओर देखकर अंशु बोली नहीं, व्यंजन की आवश्यकता नहीं, आर्य को मौलसरी के नीचे शिलापीठ का मार्ग दिखाओ। फिर उसने मारिस की ओर देखा, आर्य दासी तुरंत उपस्थित हो गई। मौलसरी के नीचे शिलापीठ पर बैठा मारिस विचार कर रहा था, दिव्या से वह क्या और कैसे कहेगा। आवेश में वह उसके अंतःकक्ष में चला गया। वह भूल की स्मृति के आवेश के स्थान पर तर्क को उद्बोधित किया। सम्मुख दिव्या आती दिखाई दी, कला व्यवसाय के वस्त्राभूषण उतार वह अब फिर श्वेत वस्त्र धारण की निराभरण थी। उसके मुख की मुस्कान भी विलोन हो चुकी थी। शिलापीठ पर मारिस के समीप बैठकर कुछ क्षण उसके प्रश्न की प्रतीक्षा कर वह स्वयं बोली, आर्य आज्ञा करे। अंशु की दृष्टि उठा, मारिस ने प्रश्न किया, भद्रे क्या यही उचित है? क्या तुमने यही स्वीकार किया? कुछ पल प्रश्न का अभिप्राय अवगत करके अंशु ने उत्तर दिया, आर्य उचित अनुचित का विचार करके स्वेच्छा से कुछ स्वीकारा नहीं किया, यह भाग्य है। मारिस सचेत हो गया, भाग्य देवी भाग्य का अर्थ है व्यवस्था। हाँ आर्य व्यवस्था है, अंशु ने स्वीकार किया। भाग्य का अर्थ है असामर्थ्य, मारिस ने पुनः बोला। हाँ आर्य असामर्थ्य, अंशु ने पुनः स्वीकार किया। अंशु की स्वीकृति से मारिस निरुत्तर हो गया। विचार कर पुनः कुछ उत्तेजना से उसने कहा, असामर्थ्य कार्य प्रयत्न और चेष्टा न करना। अंशु इस भर्सना से अप्रतिम डरी, नीलिमा लिए उसकी विशाल नेत्र झुके नहीं आ रही। उसने उत्तर दिया, प्रयत्न किया और चेष्टा की, सामर्थ्य की सीमा पर्यंत प्रयत्न किया और चेष्टा की, असमर्थ होकर असामर्थ्य को स्वीकार किया। मारिस ने कुछ क्षण ग्रीवा झुकाकर अंशु के उत्तर पर विचार किया और बोला, भद्र प्रयत्न और चेष्टा जीवन का स्वभाव और गुण है। जब तक जीवन है प्रयत्न और चेष्टा रहना करते रहना स्वाभाविक है। मारिस के स्वर में उत्तेजना और तीव्रता दूर होकर आर्द्रता आ गई। भद्र जीवन में एक समय प्रयत्न की असफलता मनुष्य का संपूर्ण जीवन नहीं है। जीवन का हम अंत नहीं देख पाते, वह निस्सीम है। वैसे ही मनुष्य का प्रयत्न और चेष्टा भी सीमित क्यों हो। असामर्थ्य स्वीकार करने का अर्थ है जीवन में प्रयत्नहीन हो जाना, जीवन से उपराम हो जाना। अपने दुख के प्रति मारिस के स्वर की आर्द्रता में अंशु के नेत्र झुक गए। ग्रीवा झुकाकर बोली, आर इसी प्रेरणा से अजाने पथ पर पांव रखने में भी संकोच नहीं किया। पथ को दुर्गम जानकर भी पग बढ़ाया गया, परंतु अपने को सामर्थ्यहीन पाया। अंशु ने दीर्घ निश्वास लिया, आज जो होना था वह हो गया, अब दुख क्या, क्या होना था, क्या हो गया देवी, मारिस ने प्रश्न किया। इस क्षुद्र जीवन में जो कुछ होना था आर्य, अंशु ने दृष्टि फेर ली, आशा और इच्छा दुख के मूल है, ज्ञानी ऐसा ही कहते, आर्य ऐसा ही पाया भी। मारिस ने अंशु की निराशा से अधिक द्रवित होकर आग्रह किया, भद्रे ऐसा क्या हो गया, वह जीवन का एक अंश था, अब तक जीवन है उसमें परिवर्तन और प्रयत्न के लिए अवसर और संभावना है। अपने आग्रह में बल देने के लिए मारिस ने अंशु के नेत्रों में देखकर कहा, कुमारी दिव्या, जीवन अनंत है और मनुष्य की सामर्थ्य भी अनंत है। मारिस की दिव्या संबोधन से अंशु का शरीर रोमांचित हो उठा। उस आवेश को वश में करने का यत्न कर उसने उत्तर दिया, आर्य धर्मष्ट की गर्विता प्रभुत्री दिव्या मर चुकी है, उसके शव में कला जीवी नर्तकी वेश्या अंशुमाला जीवित कर का शेष समय निर्वाह कर रही है। मैं आर्य की संवेदना के प्रति अति कृतज्ञ हूँ। कंत कावड़ों निकलकर मारिस बोला, भद्रे केवल संवेदना के कारण ऐसा नहीं कह रहा हूँ, तो फिर नर्तकी आर्य की उपकार की भावना के प्रति कृतज्ञ है। नहीं देवी, मैं अनुराग के कारण ऐसा कह रहा हूँ, मारिस ने उत्तर दिया। अंशुमाला का शरीर कंटकित होकर ग्रीवा झुक गई। भाद्रपक्ष के शुक्ल पक्ष की रात्रि के प्रथम प्रहर में नवमी का चंद्रमा मेघों से चित्रित आकाश में कभी उज्ज्वल कभी श्यामल हो रहा था। वर्षा के जल से तृप्त भूमि से निकल आए अनेक छिल्ली और झिंगूर मनुष्य के शब्द से शून्य हो गए, वातावरण को अपनी तीखी झंकारों में पूर्ण किए था। उन सब स्वरों से अधिक तीव्र अंशु के कानों को मारिस के शब्द जान पड़े। वह तीव्रता अनेक क्षण तक उसके कानों को व्याकुल कर मस्तिष्क को विजरित किए रही। रत्नप्रभा के प्रसाद में अत्यंत लोकप्रियता का सम्मान पाने के अवसर से कितने ही प्रणय निवेदन अंशुमाला ने सुने थे। उनके प्रति साधारण व्यक्ति से अनुभव कर हुआ व्यावसायिक शिष्टाचार से उसने उन्हें टाल दिया था। वे प्रणय निवेदन आकर्षण नर्तकी अंशुमाला के प्रति थे। मारिस दिव्या को पहचान कर दिव्या को ही स्पर्श कर रहा था, उसकी उपेक्षा असंभव न थी। उस निवेदन की उपेक्षा से अधिक कठिन था उस प्रणय निवेदन का उचित उत्तर देना। आकाश में चंद्रमा मेघों से क्रीड़ा में व्यस्त था, पृथ्वी पर वनस्पति मंद वातास में क्रीड़ारत थी, वातावरण तृप्त उल्लसित झिल्ली और झिंगूर की झंकार से व्याप्त था। अंशु मारिस के प्रणय निवेदन से संतुष्ट सिर झुकाए बैठी थी। कल्पना में उसे मारिस अपनी ओर भुजा फैलाए बढ़ता आता दिखाई दे रहा था। वह आत्मरक्षा के लिए संकुचित हो रही थी। मारिस वैसे ही बढ़ा आ रहा था जैसे एक दिन ऐसी आर्य रात्रि में पृथुसेन विभत्स स्मृति से अंशु के स्नायु शिथिल हो गए, मुख में कटुता भरा आई। प्रणयी की शक्ति से उत्साहित करने के लिए नारी का आत्मरक्षा का मधुर्भाव प्रतिहिंसा में परिणत हो गया। मस्तिष्क की मूर्ता जाती रही, कंठ की आर्द्रता भी जाती रही। अंशुमाला के भाव शून्य हो गए, मुख पर विद्रूप की मुस्कान आ गई। नर्तकी वेश्या अंशुमाला रसिकों के अनुराग विनोद के लिए प्रस्तुत है, आर्य क्या चाहते हैं। मारिस ने अंशुमाला के विद्रूप को अस्वीकार कर आग्रह किया, नर्तकी वेश्या अनुराग विनोद का नहीं, नारी के सार्थक अनुराग का प्रार्थी, नारी वह तो मर चुकी है आर्य। सहसा मेघ से मुक्त हुई उज्ज्वल चंद्रिका में मारिस के नेत्रों की दृष्टि उठा अंशुमाला ने बलपूर्वक कहा और बोली, आर्य को स्मरण है 3 वर्ष पूर्व ग्रीष्म के एक संतप्त दिवस की संध्या, नगर की दक्षिण उपांत के मार्ग पर आर्य ने आंचल में संतान लिए वेश्या बनने के लिए तत्पर एक कंगाल नारी की भर्त्सना की थी, जा यमुना के शीतल जल में शरण ली। उसी संध्या उस नारी ने यमुना के शीतल जल में शरण ली, परंतु यमुना ने उसे उगल दिया। वह नारी जल से नर्तकी वेश्या बनकर नित की। वेश्या के प्रति आर्य की उस घृणा के कारण वेश्या से अनुराग कर आर्य को क्या संतोष होगा। यह नर्तकी वेश्या अंशुमाला वही मृत नारी है, वह नारी दिव्या थी। विस्मयाहत होकर मारिस ने मेघावृत चंद्रमा की धूमिल प्रकाश में नेत्र फैलाकर अंशु की ओर देखा। अंशु के नेत्र पुनः झुक गए। मारिस अनेक क्षण तक श्वास रोके उसी अवस्था में निश्चल रह गई। विमूढ़ता दूर होने पर जब मारिस ने चेतना का दीर्घ निश्वास लिया, अंशु ने विनय के स्वर में चेतावनी दी, रात्रि के 2 प्रहर व्यतीत हो चुके हैं, आर्य इस समय विश्राम करें। मारिस से विश्राम करने का अनुरोध कर अंशु उसके नेत्रों की निंदा और मन का चैन छीन ले गई और अपनी निंदा और चैन उसके हाथों सौंप गई। मारिस के अनुराग की प्रार्थना पर विद्रूप कर हिंसक पुरुष को अप्रतिम करने की प्रति हिंसा का संतोष कर उसने अनुभव किया, परंतु सैया पर पहुंचने से पहले ही वह प्रताड़ना करने लगी। ऐसा क्यों किया? क्यों संतानवती प्रश्रय खोजती कंगाल नारिस की स्मृति मारिस के मस्तिष्क में जगाई? मारिस के अनुराग आदर का यह प्रतिफल क्या उचित था? निराश्रय को आश्रय देने के लिए संवेदना और आदर से फैलाई गई बाहु की प्रतिक्रिया यही निरादर उचित है? आश्रय की आशा और संकेत का विचार आने से अंशु के नेत्र मधुर शैथिल्य से मूंदने लगे। आश्रय देने में समर्थ भुजाओं में अपने को शिथिल कर देने में नारित्व की सफलता की प्रवृत्ति जागने लगती। आश्रय को आकर्षित कर सकने की नारित्व की प्रथम सार्थकता जागने लगती। विरक्ति और वैराग्य की यंत्रणा से मुक्ति की कामना क्यों आर्य का मन कुंठित किया? उद्वेग का वश न कर सकने के कारण अंशु का मन चाहता था कि रो दे। कैसे अस्वीकार करे कि उसकी सार्थकता मारिस के हृदय में संवेदना और अनुराग जाग सकने में ही है। मारिस की विहलता ही उसके दायित्व की विजय है। वह उसे स्वीकार कर आश्रय दे और आश्रय पा सकती है। आह, ऐसे ही एक निपटुसेन ने अत्यंत विहल और असहाय होकर उससे आश्रय मांगा था। अंशु ने अनुभव किया उसके शरीर पर श्वेत की तरलता छा गई। उसके कोमल पिठुसेन, गंभीर रुद्रधीर, माताल वृक और विज्ञ मारिस को अपनी ओर बढ़ते देखा और घृणा से सोचा, नारी रूप से वह सभी पुरुषों के सम्मुख भोग्या है, यही उसका आकर्षण है, भोग्या। अनेक करवटें लेकर उसके मन को समझाया, आश्रय के जाल में वह न फंसेगी। अंशु ने अपने मन का उद्बोधन किया, उसके जीवन में विरक्ति भी क्यों, देवी रत्नप्रभा और मल्लिका की भांति कला की आराधना जीवन का लक्ष्य बनाकर वह अपना जीवन उसको अर्पण करेगी। पराश्रित तो भोग्या न होकर वह आत्मनिर्भर बनेगी। उसने मन को सांत्वना दी, उचित ही हुआ। अंशुमाला अस्वस्थ रहने के कारण दो दिन अपने कष्ट से न निकली, वह समाज में भाग न ले सकी। उसके मुख क्रंदन का समाचार पाकर रत्नप्रभा घड़ी भर उसके पर्यंक में बैठी रही और अंशु के सिर पर हाथ रखे वह सोचती रही। इसके मन में रुके हुए दुख ने संभवतः इस आघात से बहने का मार्ग पाया। संभवतः हृदय के निरंतर दुख का भार दूर होकर वह प्रकृतिष्ठ हो सकेगी। मारिस भी अपनी वाचलता भूलकर आत्मविस्मृत और चिंतामग्न रहा। प्रायः एक पक्ष बीत गया। मध्याह्न से आरंभ हुई घोर वर्षा सूर्यास्त उपरांत भी न थमी। रसिकों के लिए रत्नप्रभा के प्रसार का मार्ग दुर्गम हो गया। आलस्य का अवसर पाकर रत्नप्रभा अपने अलिंद में बिस्तर पर उपधान के सहारे बैठी थी। विमर्श विनोद के लिए उसने मारिस और अंशु को भी बुलवा भेजा। मधुर मदिरा के प्रभाव से जड़ होते मस्तिष्क को सचेत करने के लिए रत्नप्रभा ने मारिस के लोकायत सिद्धांत के प्रति जिज्ञासा की, मित्र, यदि मृत्यु जीवन का पूर्णांत है, इस लोक और परलोक में किसी दूसरे जन्म अथवा जीवन की आशा नहीं, तो इस जीवन के प्रति भी उत्साह व्यर्थ है। यह जीवन तो केवल आकस्मिक घटना मात्र है, कारण रहित, परिणाम रहित, हुआ न हुआ। अंशुमाला ने रत्नप्रभा का प्रश्न अपनी व्यक्ति मानसिक स्थिति के अनुकूल अनुभव कर जिज्ञासा से मारिस की ओर नेत्र उठाए, क्या स्वामिनी सत्य नहीं कह रही आर्य? दस्तुर और निस्सार में क्या तत्व है? प्रश्न के प्रति विशेष उत्साह न प्रकट कर मारिस ने उत्तर में संक्षेप से और उपेक्षा से सुकेश्वर ने प्रश्न किया, स्वयं मृत्यु अनुभव किए बिना हम मृत्यु को निश्चय रूप में कैसे जानते हैं? अपने ही समान दूसरे जीवों की मृत्यु देख कर आर्य उपदान का आश्रय लिए रत्नप्रभा ने उत्तर दिया, इसका अर्थ है हम भी उसी जीव परंपरा का अंग मात्र है। मारिस ने पुनः प्रश्न किया, निसंदेह, रत्नप्रभा ने स्वीकार किया। जीव और समाज की यह परंपरा हमारे जन्म के अस्तित्व से पूर्व थी और उसके पश्चात भी रहेगी। अपने शांत नेत्र रत्नप्रभा के नेत्रों में गड़ाकर मारिस ने फिर प्रश्न किया, यह भी सत्य है? रत्नप्रभा ने स्वीकार किया। तो फिर मरना जीना व्यक्ति का है, जीव और समाज की परंपरा मनुष्य की कल्पना की सीमा तक अमर है। व्यक्ति के जीवन का कारण और परिणाम इसी परंपरा में है, यह सत्य है मित्र, परंतु मृत्यु भय का कारण है, यह भी अनुभूत सत्य है। उस भय से मुक्ति पाए बिना जीवन से अनुराग व्यर्थ नहीं क्या? रत्नप्रभा मुस्कुरा दी, तो क्या अमर होने से जीवन निर्भय और सुखमय हो सकेगा? मारिस के नेत्रों में विनोद का भाव आ गया। अमरता की कामना स्वाभाविक है, ब्रह्मज्ञानियों ने उसी को परम सुख कहा है, वही अभय है। मारिस ने उपधान का आश्रय छोड़ सीधे बैठकर प्रश्न किया, देवी, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है? पलभर विचार कर रत्नप्रभा ने किया, सजीव गतिमान है और निर्जीव गतिहीन अथवा जड़। सत्य है, मारिस ने स्वीकार किया, और गति का अर्थ है एक समय और स्थान से दूसरे समय और स्थान में प्रवेश करना, अर्थात परिवर्तन। यह परिवर्तन ही गति है, गति ही जीवन है। अमरता का अर्थ है अपरिवर्तन, गतिहीनता। देवी, यदि सूर्य जैसे और जहाँ है वही अस्थिर हो जाए, यदि जल वायु और जैसे है और जहाँ है अस्थिर हो जाए, सब अस्थिर और परिवर्तनशील हो जाए, संपूर्ण प्रकृति जड़ हो जाए, तो क्या जीवन काम्य और सुखमय होगा? रत्नप्रभा और अंशुमाला के नेत्रों में विस्मय शून्य स्तब्धता देखकर मारिस बोला, देवी, यदि सब परिवर्तन काम्य है तो मृत्यु भी परिवर्तन के क्रम का अंग है, जीर्ण के स्थान में नवीन का आना। आलस्य के भाव से मुस्कुरा कर रत्नप्रभा ने स्वीकार किया, आर्य ने कठोर सत्य को और कठोर बना दिया, यदि अनुमति हो तो विश्राम की इच्छा है, आर्य थके नहीं, अंशु भी नहीं तो बैठे। रत्नप्रभा के चले जाने से कुछ क्षण पश्चात मारिस बोला, यदि भद्रे को अप्रतिकरण हो तो उस संध्या के प्रसंग में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। आर्य को जैसे इष्ट हो, विनय ने अंशु विनय से अंशु ने उत्तर दिया। उस प्रसंग पर भद्रे ने विचार किया, अनेक बार आर्य, परंतु बहुत समय तक, प्रायः निरंतर। भद्रे की क्या भावना? आर्य, मैं त्रस्त हूँ। जीवन की सार्थकता मेरे भाग्य में नहीं। यह जीवन स्वामिनी की सेवा में, समर्थ भाग्यशालियों के विनोद के लिए, कला की सेवा की उपजीविका में व्यतीत होगा। जीवन के प्रति अंशुमाला की विरक्ति और वैराग्य से मारिस की संवेदना पूर्ण हृदय द्रवित हो उठा। उसके कातर नेत्रों की व्यथा से बचने के लिए वर्षा कणों के शेखरों में से पूर्ण अधर की ओर दृष्टि कर वह स्वागत बोला, जैसे बोला, कला कला क्या है? स्वयं ही उसने उत्तर दिया, कला केवल उपकरण मात्र है। कला जीवन के लिए और उसकी पूर्ति में ही है। जीवन से विरक्ति और जीवन के उपकरण से अनुराग का क्या अर्थ है? किसी का जीवन अन्य की तृप्ति और जीवन की पूर्ति का साधन मात्र होकर रह जाए, वह जीवन सृष्टि में और उस अपनी सार्थकता से सृष्टि में नारी के जीवन की मौलिक सार्थकता से वंचित रह जाए, जैसे सेवा के साधन दास का जीवन, भयंकर प्रवंचना। अंशुमाला का मस्तिष्क अपनी समस्या पर निरंतर चिंतन करने से उलझ रहा था। रूप लोलुप व्यसनी रसिकों के आग्रह से उसे भय ना था, परंतु मारिस की संवेदना उसे प्रास्त और अवस्था किए दे रही थी। वह प्रास्त और विचलित न होने का निश्चय कर चुकी थी। अपनी कातरता को छिपाकर उसने जिज्ञासा की, सृष्टि में नारी के जीवन की मौलिक सार्थकता से आर्य का अभिप्राय? मारिस ने अंशु के साहस से तनिक अप्रतिव अनुभव कर उसके नेत्रों में देखकर उत्तर दिया, भद्र, नारी सृष्टि का साधन है, सृष्टि की आर्य शक्ति का क्षेत्र, वह समाज और कुल का केंद्र है। पुरुष उसके चारों ओर घूमता है जैसे कोल्हू का बैल। मारिस की बात से अंशु की स्मृति में मधुपर्व उत्सव में उसकी सफलता और इस सफलता पर मारिस की स्तुति ने पुनः सजीव होकर उसे अधीर कर दिया। मन के आवेग का विग्रह कर उसने पुनः कहा, आरी, वह सब नारी के जीवन की सार्थकता अवश्य है। वह नारी की दुर्दमनीय प्रकृति और स्वभाव भी है, परंतु सार्थकता को नारी पा सकती है केवल अपने अस्तित्व के मूल्य में, केवल पुरुष की भोग्य बनकर। स्वयं दूसरों के लिए भोग्य बनकर कोई स्वयं क्या सार्थकता पाएगा? आरी, रक्त का वेग बढ़कर अंशुमाला के मस्तिष्क पर स्वेद छलक आए और स्वर में तीव्रता आ गई। संध्या और मेघ की श्यामलता के कारण मारिस अंशु की उत्तेजना न जान सका। केवल तीव्रता से ही उसे संतोष हुआ कि अंशु पर उसके कथन का प्रभाव हुआ है। अनेक क्षण विचार मग्न रह मारिस पुनः बोला, भद्रे का कथन अंशतः सत्य और अंशतः असत्य। विचार की गंभीरता के कारण उसका स्वर संयत था, कल्याणी। अनेक परस्पर विरोधी तत्वों का समुच्चय ही जीवन है। एक प्रयोजन से मनुष्य परस्पर विरोधी व्यवहार ही करता है। नारी के प्रति अनुराग से उसके आश्रय की कामना से ही पुरुष उसे सबके अपने अधीन रखकर उसे आत्मनिर्भर नहीं रहने देता। नारी प्रकृति के विधान से नहीं, समाज के विधान से भोग्य है। प्रकृति में और समाज में भी स्त्री और पुरुष अन्योन्याश्रित है। पुरुष का प्रश्रय पाने से ही नारी परवश है, परंतु भद्र, नारी के जीवन की सार्थकता के लिए पुरुष का आश्रय आवश्यक है और नारी पुरुष का आश्रय भी है। उत्तेजित स्वर में अंशुमाला ने पुनः उत्तर किया, आर्य, इस प्रश्रय में नारी के जीवन की सार्थकता क्या है? पुरुष द्वारा उसका भोग और उपयोग, जैसे पान की इच्छा होने पर पान पात्र की सार्थकता। उसके स्वास्थ्य की गति तीव्र हो गई और वह मेघों की ओर दृष्टि लगाए हुए मारिस की ओर देखने लगी। अंशु को उत्तर देने के लिए मारिस ने उसकी ओर दृष्टि की और उत्तेजनाहीन गंभीर स्वर में प्रश्न किया, भद्रे, वेश्या की, जनपद कल्याणी की स्वतंत्रता की सार्थकता क्या है? अपनी स्वतंत्रता से वह क्या प्राप्त करती है? देवी रत्नप्रभा ने क्या पाया? यदि कुलवधु एक पुरुष की भोग्य है, जनपद कल्याणी वेश्या संपूर्ण जनपद और समाज की तृप्ति का साधन है। वह जन को कामना का संकेत देती है और उसके मूल्य में जीवन के भोगों का साधन केवल धन पाती है। इसके अतिरिक्त और क्या? वेश्या जीवन की गति अर्थात काम का उत्तेजक साधन है, परंतु परिणाम में स्वयं उसका काम अर्थहीन और वंचित रहता है। उसकी कला दूसरों के जीवन में वासना की पूर्ति के अनुष्ठान के रूप में उपयोगी है, परंतु वह स्वयं क्या पाती है? वह काम के यज्ञ का साधन मात्र है। वह स्वयं पूर्ति के भविष्य से वंचित है। उसकी स्वतंत्रता का भोग जन करता है, स्वयं नहीं। वह केवल वंचना पाती है। अंशु ग्रीवा झुकाए मारिस की उत्तेजना रहित परंतु कठोर शब्दों को सुनती रही। प्रास्त और विचलित न होने का उसका निश्चय तथ्य जान पड़ते तर्क के संपर्क से जल की शीतल धार कटकर नदी में गिरते रेत की कगार की भांति प्रवाह में गिर पड़ रहा था। वह जैसे आश्रय के लिए मारिस की प्रतीक्षा में फैली आमंत्रित करती भुजाओं में गिर पड़ना चाह रही हूँ। वह प्रकाश की न्यूनता की शरण पाए ओठ दबाए बैठी थी। वह अपने नेत्रों की आर्तता मारिस के सम्मुख प्रकट न होने देना चाहती थी। इस कारण नेत्र पोछ लेने की सुविधा न थी। ग्रीवा झुकी रहने के कारण वह यह भी न जान सकती थी मारिस उसकी ओर देख रहा है अथवा मेघों की। अलिंद में सहसा प्रकाश हो गया। प्रकाश हाथ में लिए दासी दग्धा ने आकर निवेदन किया, स्वामिनी भोजन के लिए आर्य और देवी की प्रतीक्षा कर रही है। निराश्रय मलधार में वही वही जाती अंशु ने त्राण पाया। उस श्रृंखल मारिस अनेक बार देवी रत्नप्रभा के प्रसाद में आतिथ्य ग्रहण कर चुका था, परंतु इतने दिन न टिका था। मारिस का समय विरक्त और मौन रहकर वायु में हिलते वृक्षों के पत्रों को देखते रहने से न कटता। उसने प्रसाद के उद्यान में मौलश्री वृक्ष के नीचे जलकुंड के समीप एक शिलाखंड लेकर मूर्ति गढ़ना आरंभ किया। भाद्रपद के मेघ रहित आकाश के प्रचंड सूर्य की किरणों में भी माथे से स्वेद की धाराएं बहाते हुए और वर्षा में भीगते हुए भी वह हथौड़ा और छेनी लिए विशाल शिलाखंड में अपनी कल्पना का रूप निखारने के परिश्रम में व्यस्त रहने लगा। रत्नप्रभा कभी प्रातः कभी संध्या नित्य ही शिलाखंड में से प्रकट होते हुए रूप को देखने जाती। रत्नप्रभा के पूछने पर कि वह क्या बना रहा है, मारिस उत्तर देता, अपनी कल्पना को, मन की कामना को चरितार्थ कर रहा हूँ। मारिस को संबोधन करते समय रत्नप्रभा के ओठों पर और नेत्रों में प्रकट मुस्कान के पीछे हृदय में वेदन का एक सूल सा खटकता रहता। जीवन के संपूर्ण प्रयत्न से उसने जनपद कल्याणी की अपनी प्रतिष्ठा और वैभव का मंदिर खड़ा किया था, परंतु इस मंदिर में अर्चना के देवता का स्थान शून्य ही रह गया। इस अभाव के कारण उस वैभव और सफलता की कुछ सार्थकता न हो पाई। क्या मारिस पुरुष देवता के रूप में उस अभाव को पूर्ण नहीं कर सकता? रत्नप्रभा सोचती, मारिस से पुरुष के देवत्व की भिक्षा मांग उसे क्या देगी? अपना उसर वार्धक्य उस उच्छृंखल युवक पर वह केवल अपना वात्सल्य ही निछावर कर सकती थी। और अंशुमाला, अंशु को यौवन कछुए की भांति अपने आप में सिमटा हुआ अनुराग के प्रहारों को व्यर्थ कर रहा था। इस चतुर आखेटक ने उसके मर्म स्थान पर चेतना का वान मारकर उसे व्याकुल कर दिया। आत्मरक्षा के लिए वह गहरे जल के एकांत में छिपकर त्राण खोज रही है। रत्नप्रभा मन ही मन दुलार से कहती, मूर्खा, श्वास रोके कब तक तू गहन तल में एकांत से पड़ी रहेगी? तेरे सम्मुख जीवन का मार्ग और तेरी प्राण शक्ति तुझे उस ओर ले जा रही है, तू स्वयं उससे कब तक युद्ध करेगी? जाने नक्षत्रों की क्या इच्छा है। अंशु परास्त और विचलित न होने का निश्चय किए अपने आप से लड़ रही थी। मध्याह्न की नीरवता में उसने अपने कक्ष में अकेली रहने पर उसे मारिस की छैनी और हथौड़ा लेकर शिलाखंड पर निरंतर आघात करने का शब्द सुनाई देता रहता। उसे अनुभव होता वह प्रहार स्वयं उसके अपने हृदय पर हो रहे, फिर भी इन्हें सुनने की प्रवृत्ति होती, कुछ मधुर लगता। कोई आक्रोश या प्रतिहिंसा उन प्रहारों के प्रति उसे न थी, उसे आक्रोश था अपने प्रति। क्यों वह विचलित हो रही है? उस दिन मेघाच्छन्न शीतल दिवस में भी मारिस शिलाखंड और अपने यंत्रों को भुलाए निश्चेत बैठा रहा। रत्नप्रभा ने जिज्ञासा की, आर्य आज कलाकार से विरत क्यों है? देवी, वह भाव पूर्ण हो गया, मारिस के उत्तर से रत्नप्रभा विस्मित रह गई। बीच में केवल एक ही दिन वह उस शिलाखंड के समीप न जा सकी थी। उसने सोचा, इतने अल्प समय में वह विशाल शिलाखंड किस चमत्कार से मूर्ति में परिणत हो गया होगा। क्या आर्य कला का वह उत्कृष्ट रत्न स्वयं चलकर दिखाएंगे? उसने मारिस से आग्रह किया। मारिस की अनुमति प्रकट करने पर रत्नप्रभा ने दासी डगडा को आदेश दिया, सखी अंशुमाला को और मुक्तावली को भी आयुष्मान की कलाकृति का दर्शन सुख पाने के लिए निमंत्रित करो। जलकुंड के समीप खड़े शिलाखंड को रत्नप्रभा, अंशुमाला और मुक्तावली ध्यान से देख रही थी। शिलाखंड का ऊपर और नीचे का भाग अछूता था, केवल मध्य में दक्षिण की ओर आधे भाग में गवाक्ष बन गया था और उससे किसी पूर्ण युवा नारी का एक उन्नत स्तन, त्रिवली का पर भीतर झुका और नाभि से झुकता वर्तुल उभार दिखाई दे रहा था। रत्नप्रभा अपनी सखियों सहित अनेक क्षण चिमुख पर तर्जनी रखे ध्यान से उस कृति का मनन करती रही। मारिस भी मौन खड़ा रहा। आर्य, रत्नप्रभा ने मूर्तिकार को संबोधन किया, क्या यह कृति पूर्ण है? देवी, मेरे अभिप्राय से यह पूर्ण है, मारिस ने उत्तर दिया। रत्नप्रभा ने मुस्कान से आग्रह किया, आर्य, मेरे मत से यह नारी का अंग मात्र है, पूर्ण नारी नहीं। अपने रूखे केशों को अंगुली से खुजाकर मारिस ने उत्तर दिया, देवी का कथन उचित है, परंतु नारी का यही अंग उसके नारित्व की सार्थकता के लिए पुरुष का आवाहन करता है, फिर उस फलीभूत सार्थकता का पोषण करता है, यही नारी है देवी। रत्नप्रभा ने विचार में गंभीर मारिस की ओर आदर से देखा, आर्य, यह पाषाण की चेष्टाई स्वर में नारी के जीवन की व्याख्या है, रत्नप्रभा के स्वर में स्तुति थी। मुक्तावली ने लजाकर ओठों पर आ गई मुस्कान छिपाने के लिए मुख फेर लिया। अंशु ध्यान से शिलाखंड में कटे गवाक्ष की ओर देखती थी, उसके कान में मारिस के वे ही शब्द गूंज रहे थे जो नारी में सृष्टि की आदि शक्ति है। अंशु रात्रि में पुनः अनिद्रा से पर्यंक कर करवटें लेती, उभरे उरोजों के नीचे अधीर होते हृदय को दोनों हाथों से संभाले जीवन की सार्थकता के मूल्य की मीमांसा करती थी। प्रत्येक कुछ क्षण पश्चात दीर्घ निश्वास लेकर वह निश्चल कराती, वह अविचलित रहेगी। दूसरे दिन प्रातः रात्रि में अनिद्रा के कारण मस्तिष्क पर छाई हुई जड़ता से मुक्ति पाने के लिए अंशु सूर्योदय के समय ही अपने कक्ष से उठ उद्यान में फूले कदम्ब के नीचे जा बैठी। मारिस को अपनी ओर आते देख उसे अपने ऊपर क्रोध अनुभव हुआ, परंतु शालीनता से उसने अभ्यर्थना की, आर्य का मन और शरीर स्वस्थ है? कदम्ब वृक्ष के तने का आश्रय लेकर मारिस अंशु के समीप खड़ा हो गया। उसके नेत्र अनिद्रा के कारण रक्त उभरे हुए थे। अंशु के बोझिल और शांत नेत्रों की ओर देखकर उसने उत्तर में प्रश्न किया, भद्रे, क्या मन की दुविधा के कारण अनिद्रा जनित शैथिल्य को दूर करने की चेष्टा में है? आर्य का अनुमान सत्य है, मुस्कान का शिष्टाचार भूल अंशुमाला ने ग्रीवा झुकाकर स्वीकार किया, परंतु भद्रे, समस्या का समाधान हुए बिना दुविधा का अंत नहीं होता। समस्या है प्राणों और जीवन की स्वाभाविक गति और प्रवृत्ति की पुकार, प्राणों का दमन और आत्महनन समस्या का समाधान नहीं है। परंतु आर्य, मेरे लिए प्राणों का दमन और आत्महनन के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं, निरुत्साह से अंशु ने उत्तर दिया। इस विश्वास का कारण भद्रे? आर्य, मैं ट्रस्ट हूँ, अपने जीवन के अनुभवों से ट्रस्ट हूँ। अंशु के नेत्रों और स्वर में कातरता आ गई। मारिस कदम्ब के वृक्ष का आश्रय छोड़कर अपने पांव पर खड़ा हो और बोला, भद्र, जीवन का कोई अनुभव अस्थायी और चिरंतन नहीं। जीवन की स्थिति समय में है और समय प्रवाह, प्रवाह में साधु असाधु, प्रिय अप्रिय सभी कुछ आता है। प्रवाह का यह क्रम ही सृष्टि और प्रकृति की नित्यता है। जीवन के प्रवाह में एक समय असाधु और प्रिय अनुभव आया, इसलिए उस प्रवाह से विरक्त होकर जीवन की सुधा को तृप्त न करना केवल हठ है। आर्य उस प्रयत्न में विफल हो चुकी। भद्र, जिन परिस्थितियों में वह प्रयत्न विफल हुआ वह शाश्वत न थी। निरंतर प्रयत्न जीवन का लक्षण है। जीवन के एक प्रयत्न या एक अंश की विफलता संपूर्ण जीवन की विफलता नहीं है। भद्र, बारिश को उत्तर की प्रतीक्षा में मौन देख अंशुमाला झुके हुए नेत्र उसकी ओर उठाकर बोली, आर्य यह भी सत्य है, परंतु मैं ट्रस्ट हूँ। प्रश्न के मूल्य पर जीवन की सार्थकता नहीं चाहती। जीवन की विफलता में भी मुझे वेश्या की आत्मनिर्भरता स्वीकार है। आर्य यही मेरा निश्चय। अपने आप को नितांत अवश्य अनुभव कर उसने उत्तरीय से नेत्र ढक ग्रीवा झुका ली। बारिश एक दीर्घ निश्वास से अपने आप को संयत कर पुनः बोला, भद्रे, संतोष पाने और संतोष देने की आशा से मैंने तुम्हें क्लेशित किया। देवी का निश्चय जानकर आज बारिश मथुरापुरी से प्रस्थान कर जाएगा। भद्रे, उसका शुभ संकल्प स्वीकार करे। बारिश को मथुरापुरी से गए 1.5 वर्ष व्यतीत हो गए। रत्नप्रभा प्रायः उसे स्मरण कर उसके प्रसंग की बात करती। अंशु ने स्वयं वार्तालाप में उस स्मृति को कभी न जगाया। स्नेह स्नेह उसके प्रकट व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। निरंतर अवसाद की जड़ता से मुक्ति पाकर कला के अध्यवसाय में वह विशेष उत्साह पाने लगी। उस वर्ष वृंदावन के डोलोत्सव में उसने गुरु पूजा के अभिनय में नृत्य संगीत की नवीन समन्वय सरस्वती मल्लिका नाम से उपस्थित किया। उसकी ख्याति जनश्रुति की लहरों पर दूर देश की ओर फैलने लगी। मथुरापुरी के रसिक समाज से संतोष अनुभव किया। नगर की शोभा जनपद कल्याणी रत्नप्रभा के उद्यान में कला की स्फुट कलिका अंशुमाला अपने पातल दल विकसित कर सौरभ उन्मुक्त करने लगी। सुदूर देश सागल में स्थित कला के निष्ठात्री मल्लिका की उन्होंने केवल कीर्ति सुनी थी। अंशुमाला को वे स्वयं देख रहे थे। अंशुमाला से अधिक सरस कला की कल्पना उनके लिए संभव न थी। अंशुमाला का निराशा और विरक्ति में बीतने वाला एकांत समय कला के रहस्यों के चिंतन और साधन में बीतने लगा। वह मारिस की स्मृति से मुक्ति पाने का संघर्ष न करती। जिसे टाट प्रबुद्ध शर्मा धाता और छाया की स्मृति थी वैसे ही मारिस की थी। उससे कुछ अधिक समय कभी वह आशा करती पुनः आने पर आए देखेंगे कि मैंने जीवन में संतोष का एक अवलंब पाया। शिशिर के आरंभ में एक दिन रात्रि के पहले प्रहर की समाप्ति पर समाज का अंत हुआ। नृत्य के श्रम से छलके श्वेत बिंदुओं पर शीतल वायु का सुखद स्पर्श पाने के लिए अंशुमाला चतुस्साल से निकलकर शुक्ल पक्ष की चांदनी में चटके मालती कुंज की ओर चली गई। कुछ समय पश्चात एक दासी ने आकर निवेदन किया, देवी, एक अभिजात विदेशी अभ्यागत साक्षात्कार के लिए चतुस्साल में समय तक प्रतीक्षा कर रहा है। अंशु की कल्पना में मारिस की स्मृति कौंध गई, परंतु दासियां आर्य मारिस से परिचित थी। सुने हो गए चतुस्साल में अभ्यागत दीप के प्रकाश में अकेला बैठा प्रतीक्षा कर रहा था। अलिंद में ही सभी ने अभिवादन कर समीप जाकर अंशु ने ध्यान से देखा, विस्मय से मुक्त रह गए और उसके ओष्ठों से निकला, आर्य कुशल सेम से है? टाट बंधुवर्ग और कुलनारियां कुशल है? आर्य ने इस नगरी पर कब कृपा की? अंशुमाला के शिष्टाचार की मुस्कान का प्रभाव रुद्रधीर की गंभीरता पर न पड़ा। उसने उत्तर दिया, भद्रे को स्मरण होगा, धर्मस्थान से पाए 2 सहस्र दिवस के निर्वासन दंड के कारण इतने काल तक मैं सागल में नहीं था। केवल संवाद द्वारा ही सागल का वृतांत जान पाया। मगर प्रवास के समय देवी अंशुमाला की ख्याति सुनकर स्वदेश के मार्ग में देवी का दर्शन की इच्छा से चला आया। जो देख रहा हूं कल्पनातीत था। रुद्रधीर के संकेत से मन पर आते अवसाद का प्रतिकार कर मुख पर मुस्कान बनाए रखने का यत्न कर अंशुमाला ने उत्तर दिया, आर्य, स्रोत से निकलने के समय जल नहीं जानता वह किस दिशा में, किस नदी और किस सागर में बह जाएगा। अंशुमाला की तटस्थ तरलता से कुंठित होकर उसका मन कुरेदने के अभिप्राय से रुद्रधीर ने कहा, दासपुत्र पृथुसेन और गणपति की पौत्री सीरो के विवाह का समाचार मगध में सुना और कुमारी के विषय में अकाल मृत्यु का अपवाद भी। क्या भद्रे की उसी शरीर में उसका पुनर्जन्म है? अंशुमाला विक्षिप्त न हुई, आर्य का अनुमान सत्य है। उसने मुस्कुरा लिया। अंशु की तटस्था रुद्रधीर के लिए असह्य थी, ऐसा ही होगा। उसकी ग्रीवा झुक गई और फिर सहसा नेत्र उठाकर अंशु के नेत्रों में देख हुआ बोला, प्रपोत्री के शोक में तात धर्मष्ट के स्वर्गारोहण का संवाद भी सुना। स्वयं ही लज्जा अनुभव को उसकी दृष्टि पुनः झुक गई और छीन स्वर में उसने कहा, तात आचार्य भी उदर रोग से संसार मुक्त हो चुके हैं। अंशुमाला कुछ क्षण मौन रह गई, उसका स्वर आर्द्र हो गया। टाट आचार्य और टाट धर्मष्ट अत्यंत वत्सल थे, वे सभी के प्रिय थे, वे देवताओं के आदर की योग्य थे, इसलिए स्वर्ग में भी उनका आवाहन था हुआ। आर्य को विदेश में और यात्रा में असुविधा तो नहीं हुई, मगर विशाल और समृद्ध साम्राज्य उसकी विशेष ख्याति और महिमा है, परंतु मातृभूमि का आकर्षण स्वभावतः प्रबल होता है। स्वदेश के लिए आर्य की यात्रा मंगलमय हो। चिरकाल पश्चात सहसा दिव्या को देखकर जैसे भावोद्रेक रुद्रधीर ने अनुभव किया था, वैसा अब एक दिव्या के व्यवहार में न था। वह मन ही मन अत्यंत अनुत्साहित और कुंठित हो रहा था। इस परिस्थिति को टालने के लिए वह बोला, इस समय विलंब हो जाने के कारण भद्रे अवकाश दे, यदि मथुरापुरी में कुछ समय रहा तो पुनः दर्शन की इच्छा करूंगा, कृपा होगी आर्य। हाथ जोड़कर विनित शिष्टाचार से सुमाला ने उत्तर दिया, अभ्यागतों का अनुग्रह ही इस प्रसाद का सौभाग्य है, दासी अनुग्रहित होगी। मथुरापुरी में रुद्रधीर ने महापंडित आचार्य सुचित के प्रसाद में आतिथ्य ग्रहण किया। मगध में ही सूरसेन की जनपद कल्याणी रत्नप्रभा की शिष्या अंशुमाला की ख्याति सुनकर कौतूहल से देवी के दर्शन करने व रत्नप्रभा के प्रसाद में गया। वहां अकस्मात अपने विश्वास में मृत दिव्या को सजीव पाकर दिव्या के प्रति उसका अतीत अनुराग सहसा उमड़ पाया, परंतु दिव्या के व्यवहार में शिष्टाचार का आवरण लिए विरक्ति से वह हतप्रतिव अनुभव कर रहा था। अंशुमाला की निसंकोच शालीनता उसे वेश्या के व्यवसायिक शिष्टाचार जान पड़ा, जो कुलकन्या के लिए निर्लजता और धृष्टता थी। अनुराग और विरक्ति के द्वंद से रुद्रधीर का मस्तिष्क विक्षिप्त हो गया। रत्नप्रभा के समाज में दिव्या को पहचान कर रुद्रधीर अनेक क्षण तक विस्मय से जड़वत रह गया। मस्तिष्क सुस्त होने पर सागल का अतीत जीवन उसकी कल्पना में सजीव हो गया। अंशुमाला और मुक्तावली का नृत्य, रत्नप्रभा का संगीत उसके लिए निरर्थक और निष्प्रयोजन था। अपनी कल्पना में वह तार धर्मस्त्र और अन्य सामंतगण के प्रसाद और देवी मल्लिका के समाज में स्थान स्थान पर दिव्या को देखने लगा। अब वह फिर उसी सागल की ओर लौट रहा था। मलेच्छों, दासों और शूद्रों के हाथों से मद्र के द्विजकुल की राजलक्ष्मी का उद्धार करने की उसकी प्रतिज्ञा थी। उस मार्ग में मद्र के द्विजकुल के अपमान के संकेत दासपुत्र पृथुसेन द्वारा वंचित प्रताड़ित दिव्या का उद्धार कर वह पृथुसेन और मद्रसेन के जनसमाज को दिखाएगा विजय किसकी है। परंतु दिव्या के व्यवहार और शब्दों ने उसकी कल्याण कल्पना के प्रसाद की भित्ति ढहा दी। मन में उमंग उठी आशा को दीर्घ निश्वास से निकाल फेंकने का यत्न कर वह अपने मन को समझाने लगा। जिस संकोचशील भीरू कुलकन्या कुमारी दिव्या की कामना उसने की थी वह संसार से लोप हो चुकी है, परंतु प्रत्यक्ष देखे सत्य को उसका यह मानसिक प्रयास प्राप्त न कर सका। महापंडित आचार्य सुचित के विशाल प्रसाद में मध्यरात्रि की देव पूजा के अनुष्ठान में घंटा, घड़ियाल और शंख का नाद समाप्त होकर नीरवता छा गई। प्रहरियों की अपनी निंद्रा के प्रतिकार के लिए दूसरों को सचेत और सावधान रहने की ललकार के अतिरिक्त और कोई शब्द सुनाई न देता था। ललकार की रक्षा में निंद्रा गतों के शमस्वास की नीरवता विशाल प्रसाद के प्रत्येक कक्ष में उठकर आकाश में भर रही थी, परंतु रुद्रधीर के नेत्रों में निंद्रा न थी। गृहपति के विशेष अनुग्रहित आयोजन से अत्यंत कोमल पर्यंक पाकर भी वह मानसिक उलझन के कारण करवटे ही ले रहा था। निंद्रा के सभी संचारी उपकरण व्यर्थ थे। सुस्वादु भोजन और सुरभित मधुर सुरा उसे रुच नहीं रही थी। यात्रा से शांत शरीर ने कोमलांगी सेवाचतुर दासी द्वारा सेवा पाकर भी विश्राम अनुभव न किया। दिव्या का व्यावसायिक शिष्टाचार, उसका अतीत की उपेक्षा करना रुद्रधीर को बार बार स्मरण हुआ था। बार बार उसके शब्द मस्तिष्क में जाग उठते, अभ्यागतों का अनुग्रह ही प्रसाद का सौभाग्य है, दासी अनुग्रहित होगी। साधारण अभ्यागत के प्रति आदर का यह व्यवहार रुद्रधीर को अपनी असह्य उपेक्षा और अपमान का अनुभव हुआ। इन शब्दों में वेश्या की आत्मा और उसकी वृत्ति ही प्रतिध्वनित गूंज रही थी। कोमल पुनीत कुलकन्या दिव्या के मृत शरीर पर उसे निर्लज्ज वारंगना अंशुमाला तांडव करती दिखाई दे रही थी। भ्रांति के मार्ग पर पड़ गए अपने पदों को लौटा कर उसने अपने ध्येय की ओर चलने के लिए मन को समझा रहा था। आचार्य सुचित की गोष्ठी में उसने अंशुमाला की विशेष स्तुति सुनी। वेश्या के गुणों को कुलनारी के लिए अपवाद स्वरूप ग्रहण कर उसने अपने मन को समझाई, वेश्या मोहन उसका व्यवसाय है। परंतु वृद्ध आचार्य सुचित के पुत्र रुद्रधीर के समवयस्क अनिरुद्ध ने अंशुमाला के प्रति विरक्ति से कहा, अंशुमाला दूर से देखने की वस्तु है, वह कला की काष्ठ पुतलिका है, उसका भाव विलास केवल कला का अनुष्ठान है, वह निर्लिप्त नटकी है, वह कला की भृति करती है, वह मन को संतोष देने वाली वेश्या नहीं है। अंशुमाला के प्रति अपवाद के इस आघात से निरुद्रधीर के कानों पर पड़कर अनिच्छा होने पर भी उसे कल्पना करते रहने के लिए विवश कर दिया और उसकी कल्पना में शिशक्ति अंशुमाला के सौ पर छली दासपुत्र द्वारा पीड़ित और ट्रस्ट पुनित कुमारी दिव्या अपने सौभाग्य रूप में खड़ी दिखाई देने लगी। रुद्रधीर विचलित हो उठा। रुद्रधीर ने यात्रा की शांति दूर करने के लिए मथुरापुरी में केवल 2 दिवस विश्राम करने का निश्चय किया था, परंतु से वह पूरा एक पक्ष बीत गया। वह नित्य संध्या समय रत्नप्रभा के प्रसाद में जाकर समाज में सम्मिलित होता, समाज के पश्चात भी प्रसाद में विलंब कर वह अंशुमाला से वार्तालाप करता। अंशुमाला विनीत शिष्ट और निसंकोच आदर के लिए प्रस्तुत रहती। आत्मीयता से शून्य शिष्टाचार से पूर्ण अंशुमाला का व्यवहार रुद्रधीर के लिए संतोष का नहीं व्यथा का कारण होता। वह सागल के प्रसादों में समाज के समय अपने सम्मुख आ जाने से भाव में संकोच की भीरुता, नेत्रों में लज्जा की कातरता से ग्रीवा झुका लेने वाली दिव्या के व्यवहार में पुनः अपने तेज की स्वीकृति देख पाने के लिए व्याकुल और व्यग्र हो रहा था। रुद्रधीर के विचार और विश्वास में अतीत की स्मृति के संबंध में अंशुमाला के समीप उसका विशेष स्थान और अधिकार था, परंतु रत्नप्रभा के समाज में सम्मिलित होने वाले अभिजात वंशीय प्रतिष्ठितों में उन्हीं के समान एक व्यक्ति था। अधिक द्रव्य भेंट कर सकने वाले अतिथियों का आदर अपनी अपेक्षा अधिक देखना, उसके अधिकार और वंश का निरादर था। समूह में उपेक्षित और अनिर्दिष्ट रह जाना उसके लिए हृदय पर शूल के आघात के समान था। उस व्यवहार में विरक्ति अनुभव कर वह अपने आतिथ्य के यहाँ लौट जाता। रात्रि के एकांत में विचार करते समय अनिरुद्ध शर्मा के मुख से सुना अपवाद कानों में पुनः पुनः गूंजता रहा। अंशुमाला कला की काष्ठ पुत्तलिका है, उसका भाव विलास केवल कला का अनुष्ठान है। वह निर्लिप्त नर्तकी है, वह कला की भृति करती है, वह मन को संतोष देने वाली वेश्या नहीं। रुद्रधीर का मन आगे कहता, वह विप्रकुल की कन्या है, अभिजात सामंत वंश की वधु लक्ष्मी है, उसका नारित्व सुरक्षित है। रुद्रधीर की विरक्ति प्रबल आसक्ति में परिणत हो जाती, वह निश्चय ही दिव्या को पुनः प्राप्त करेगा। रुद्रधीर के लिए किसी संध्या में रत्न प्रभा के समाज में अनुपस्थित रहना असंभव हो गया। रुद्रधीर ने निश्चय किया, वेश्या के आसन पर स्थित दिव्या की दृष्टि में अपने लोभ के कारण न सही, स्वामिनी की सेवा के विचार से सही। यदि द्रव्य का ही सम्मान है तो द्रव्य भी वह देगा, द्रव्यहीन वह भी नहीं। वह मद्र गणराज्य की परिसर के संवाहक का पुत्र, 10 ग्राम के अग्रहार का उत्तराधिकारी, विप्र सामंत है। विदेश में यात्रा करते समय रुद्रधीर विशेष द्रव्य लेकर न चला था। सागल से विदेश के लिए प्रस्थान करते समय आचार्य प्रवर्धन ने अभाव और आड़े समय पुत्र की रक्षा के लिए सिंघल के बड़े बड़े मुक्ताओं का 7 लड़ी का हार रुद्रधीर के गले में अपने हाथों से पहना दिया था। वह बहुमूल्य हार प्रायः 1 ग्राम की संपत्ति के मूल्य का और आचार्य वंश की पारिवारिक संपत्ति का अंग था। रुद्रधीर उस हार को अपने वस्त्रों के नीचे सरा हृदय पर पहने रहता था। अंशुमाला समाज में अष्टोन्मुख चंद्रमा के प्रति चक्रवाक के व्याकुलता का रूपक नाच रही थी। निष्पलक समाज अत्यंत तन्मयता से उसकी प्रेरक भाव भंगी को देख रहा था। अंशु की फैली बाहों में अंगुलियां, नेत्र ओष्ठ सूक्ष्म कंपन से चक्रवाक की व्यग्रता प्रकट कर रहे थे। अभिनय भावोद्रेक की सरम सीमा पर पहुंच गई। समाज अवरुद्ध श्वास और स्तब्ध था। मुद्रा पूर्ण कर अंशुमाला ने श्वास लिया। वादक अपने यंत्रों को एक ओर रख मस्तक से स्वेर पोछने लगे। नटकी की मोहक कला पर निछावर रसिक समाज अपनी भावना की अभिव्यक्ति में स्वर्ण मुद्रा, रत्न और आभूषण रत्न प्रभा के आसन के सम्मुख भेंट करने लगे। अंशु मुस्कान से रसिकों का आदर स्वीकार कर रही थी। सहसा मुक्ता का एक भारी हार समाज में से फेंका जाकर अंशुमाला के चरणों के समीप गिरा। उस माला को देखकर समाज विस्मित रह गया। समीप बैठे सृष्टि विनायक के नेत्र फैले, उसके मुख से निकला 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा। समाज माला फेंकने वाले विदेशी की ओर विस्मय से देखने लगा। अंशु ने देखा, रुद्रधीर माला फेंक ग्रीवा ऊंची की ललकार की मुद्रा में खड़ा था। समाज से पाई भेंट वह देवी रत्न प्रभा के सम्मुख रखती जा रही थी, परंतु उस माला को मस्तक से लगा वह हाथ में थामे रहे। समाज समाप्त होने पर रुद्रधीर अंशुमाला की ओर न गया, गंभीर मुद्रा में वह आसन पर बैठा रहा। अंशुमाला हाथ में मुक्ता माला लिए कृतज्ञता से मुस्कुराते हुए उसके आसन की ओर गई। मन में रुद्रधीर ने कहा, आज अपना मूल्य पाकर तुम संतुष्ट हुई हो। रुद्रधीर के समीप जाकर अंशुमाला विनय से बोली, कला के प्रति अति अनुराग से दी गई आर्य की बहुमूल्य भेंट के लिए दासी सदा कृतज्ञ रहेगी। रुद्रधीर ने संतोष का श्वास लेकर उपेक्षा के भाव से मुस्कुरा दिया। अंशुमाला ने प्रार्थना की, सागल में आर्य ऐसी सत्साह भेंट निछावर कर सकते थे, परंतु विदेश में संकट के समय सहायक हो सकने योग्य इस वस्तु को आर्य अपने से पृथक न करे। कुंठित भाव से निराशा अनुभव कर रुद्रधीर ने प्रश्न किया, क्यों, क्या यह क्षुद्र भेंट देवी की सुकृति के योग्य नहीं? उसकी स्वर में कठोरता आ गई। वेश्या का आसन स्वीकार कर लेने पर क्या द्रव्य के लोभ की सीमा नहीं रहती? नहीं आर्य। अंशुमाला अब भी मुस्कुरा रही थी। दासी आर्य की भावना की टाट है, भावना को सुरोधारी करती हूँ। उसने माला मस्तक से छुआ कर कहा, परंतु उस भावना की प्रतीक यह मुक्ता माला लौटा रही हूँ, जैसे अर्घ्य पात्र से केवल अर्घ्य ग्रहण किया जाता है, पात्र नहीं। ऐसा भी आर्य की विदेश की परिस्थिति के कारण है। व्यवसाय की मुस्कान लिए निसंकोच दृष्ट अंशुमाला ने रुद्रधीर की दृष्टि में सहसा विराट गरिमा धारण कर ली। उसके रोम सिहर उठे, भावावेश से उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। रुद्रधीर भावावेश से उसने अपना हाथ मुस्कुराती हुई अंशुमाला के शीतल बाहुमूल पर रखकर अधीर स्वर में बोला, भद्रे मेरे समीप तुम आज भी श्रेष्ठ विप्रकुल की कुमारी हो, तुम्हारा स्थान विप्रकुल की वधु लक्ष्मी के आसन पर है। 7 वर्ष पूर्व आचार्य अग्रहार रुद्रधीर तुम्हारी पानी के लिए तुम्हारे परिवार के सम्मुख प्रार्थी था। देवी आज तुम स्वतंत्र हो, इसलिए रुद्रधीर तुम्हारे पानी के लिए तुम्हारे सम्मुख प्रार्थी है। रुद्रधीर सागल की कुलश्री को पुनः सागल पहुंचाकर सागल को भाग्यवान करेगा। अंशुमाला के ओठों पर अभी भी चित्रलिखित सी मुस्कान स्थिर थी। अंशुमाला के बहुमूल पर रुद्रधीर की अंगुलियां कठिन हो गई। भद्रे, रुद्रधीर ने संबोधन किया, तुम्हें आचार्य पत्नी के रूप में ग्रहण कर रुद्रधीर सागर लौटेगा, तुम्हारा स्थान आर्य कुल की महादेवी के आसन पर। अंशुमाला की मुस्कान अब भी विचलित न हुई। कोमल परंतु स्थिर स्वर में उसने उत्तर दिया, आर्य सागर के शैविल्य वंश की कुमारी दिव्या मतिभ्रम से अथवा भाग्य के जीवन की सरिता से अजाने प्रवाह में प्रवेश कर गई। जब वह उस प्रवाह में से निकली तो वह वेश्या नटकी अंशुमाला है। वह अपने कुमारी की पवित्रता भी खो चुकी है। एक स्वामी के लिए अर्पित न होकर वह सागल और जन की संपत्ति बन गई। रुद्रधीर ने अंशुमाला के और समीप होकर उत्तेजित आर्यस्वर में आग्रह किया, भद्रे, कंचन की खान से लौह उत्पन्न नहीं हो सकता। वंश और कुल मनुष्य की शक्ति से ऊपर देवता की कृति है। मनुष्य न कुल दे सकता है न कुल छीन सकता है। तुम्हारी धमनियों में विप्र कारक है। कीचड़ में गिरकर भी स्वयं पत्थर नहीं हो सकता। रुद्रधीर प्रतिज्ञा करता है कि आचार्य पद पर वह तुम्हें पत्नी के रूप में ग्रहण करेगा। रुद्रधीर ने गंभीरता से अंशुमाल माला के शल मुस्कान भरे नेत्रों में देखा। अंशु ने विनय से मुस्कुरा दिया। आर्य की भावना के प्रति दासी अत्यंत कृतज्ञ है। अपनी प्रवृत्ति के कारण दासी कुलवधु के सम्मान के योग्य नहीं। दुर्भाग्य की अग्नि में जलकर दासी ने स्वतंत्र नारी का कलंक पाया। वही उसे प्रिय है। क्या कहती हो कुमारी, तुम विप्र कन्या हो। रुद्रधीर का स्वर कांप रहा था। आर्य, अंशुमाला ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया। नदी का जल एक बार उच्छृंखल हो प्रदेश में फैल जाने पर पुनः लौटकर नदी के तटों में नहीं सिमट सकता। रुद्रधीर अंशुमाला की दृष्टि की ओर दृष्टि लगाए निर्वाक रह गया। उसकी मूक कठोरता को अलक्ष्य कर अंशुमाला ने चिंता प्रकट की। विलंब के कारण आर्य को रात्रि के सीट से कष्ट होगा। अनुमति हो तो दासी आर्य के रथ में अर्घ्य उपस्थित करने के लिए सेवक को आदेश दे। दो दिन नहीं, तीन मास और एक पक्ष के लिए रुद्रधीर मथुरापुरी में रहा। अनेक प्रकार से अनेक तर्कों का आश्रय लेकर उसने अंशुमाला के सम्मुख आचार्य की पत्नी के रूप में सागर लौटने की प्रार्थना की। परंतु अंशुमाला ने विनयपूर्व मुस्कान से असमर्थ प्रकट कर क्षमा चाही। असफल, निराश, विवश रुद्रधीर सागर प्रस्थान के लिए अंशुमाला से विदा लेने आया। उसके अंतिम स्फुट शब्द थे, विप्र कुल की संतान आर्य, आज भी तुम परम पुनीत हो। अग्निमुख प्रवात वंशज आचार्य रुद्रधीर व्यवस्था देता है, तुम विप्र कुल की लक्ष्मी आसन की अधिकारी हो। आचार्य के हृदय में तुम पत्नी रूप में आसीन हो, यह तुम्हारी पवित्रता का प्रमाण है। कुमारी, व्यवस्थापक विप्र का मत ही प्रमाण है। लक्ष्मी प्रतीक्षा करना, एक दिन रुद्रधीर तुम्हें लेने आएगा। सागल की कुलश्री पुनः लागल लौटेगी। अंशुमाला ने विनय से मस्तक झुकाकर मुस्कान से उत्तर दिया। आर्य की आदर भावना के लिए दासी कृतज्ञ रहेगी। आर्य की कृपा से दासी अपनी अवस्था में संतुष्ट है।